أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی اب آواز ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کے لیے؟ الحمد للہ سب اپنی بریک سے واپس آ گئے. جی ماشاء اللہ. کیا سیکھا ہے ہم نے ابھی تک کے لیسن سے؟ آپ لوگ اب سب اپنی اپنی ڈسکشن بتائیں، اپنی طرف سے شیئرنگ دیں. کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی کے گھر جاتے ہوئے ان کو انفارم کرنا، یا وہاں پہنچ کر بھی ناک کرنا، یا گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے کسی دوسرے کی طرف یا کسی کمرے میں جاتے، کسی سے ملتے. ہاں، اسلام ٹیچرز ڈیسنسی، بالکل. اور ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن جس کی حکمت کتنی بڑی ہے. کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں، اور ایٹیکیٹ آف انٹرنگ ہومز، اور سلام قبل الکلام. بالکل ٹھیک. ڈونٹ مس یوز یور فریڈم، اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور پھر اب ہم سب کو پتا نا کہ یہ بھی کتنا برا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص منع کر دے کہ نہیں آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم شیطان ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا برے خیالات ڈالتے ہیں. بلکہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایکسیپٹ کرنا ہے. سو اگلے شخص کی ایک فریڈم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جس ہمیں کسی سے ملاقات کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم کچھ ان کی خیر خیریت لے سکتے ہوں اور تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہوں. اگر ایسے میں کسی سے ملے کہ جس میں وہ بھی انیزی ہوں، تو پھر یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی نا، اور ایک اچھی میٹنگ نہیں ہو سکتی. اللہ پر اور پیار آ رہا ہے کہ کتنے بہترین ہم سب کو احکامات دیے ہیں نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، الحمدللہ. جی بٹ یہ آیتیں پڑھ کر اگر ایسی بات ہو تو خوشی سے لوٹ جانا ہے. بالکل. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اتنے زیادہ اس چیز کے حریص تھے. ایک سیکنڈ جسٹ پلیز. جی تو وہ کس قدر اس بات کے حریص تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ملے، کہ وہ کسی کے گھر جائیں اور پھر لوگ ان کو ریفیوز کر دیں کہ نہیں آپ ابھی نہیں آئے، ہے نا. یا پھر یہ کہ انسان تین دفعہ نوک کر کے پھر واپس چلا جائے. یہ آیتیں پڑھ کر اگر ایسی بات ہو تو خوشی سے لوٹ جانا ہے. یعنی ہمارے یہ دیکھ، ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے نا کہ ایک ایمان والا بڑے دل کا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات عام ہی حالات میں، کوئی اسپیشل حالات نہیں ہوتے، لیکن دوسروں کو سرپرائز دینے کے لیے یا جان کر ان کے پاس بغیر انفارم کیے جانا چاہتے ہیں. تو یہ بھی کتنی غلط بات ہے نا. کہ اسپیشلی اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں دیکھوں کہ یہ گھر میں رہتی کیسے ہیں، یا یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کا گھر کس طرح سے رکھا جاتا ہے. تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے نا. بالکل. کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ کیا وجہ ہے؟ دل چاہتا ہے کہ سارے ہمارے ارد گرد قرآن سمجھ جائے تو ہم سب مل کر عمل کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی گھر والے معاون بن جائیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی، یہ نہیں، یہ غلط ہے نا. بالکل. اور اگر ہم تھوڑا سا ان کے بھی، دوسروں کو بھی یا ہمیں بھی کسی کے گھر جاتے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے اگر ہم کسی کو بتائیں کہ ہم گھر آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کچھ ارینجمنٹ کریں، اپنے گھر کو اچھا بنائیں اور اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں. تو یہ تو مہمان کی عزت میں ہوتا ہے، بجائے اس کی کہ ہم چاہیں نہیں ہم ایسے ہی جائیں اور ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں. سرپرائزز آر ناٹ آر دینی پریکٹس. بالکل. اور یہ کتنی عام ہے نا. ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی کیا ہو جب تک کہ ہمیں یہ آیت نہیں پتا تھی. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کریں، ہماری کسی بھی غلطی کوتاہی سے بھی ہمیں درگزر کریں، آئندہ بھی ہم اس پر اچھے سے جمیں کہ ہمیں کبھی ایسے نہیں کام کرنے. Intruding without permission is rude. جی بالکل. Intruding without permission is rude. بالکل صحیح بات ہے. اور گیو پیپل ٹائم فار پریپریشن. بالکل صحیح بات ہے. پھر ہمیں بچوں کو بھی یہ چیز ٹرین کرنی چاہیے نا. جی کہ ہمیں ان کو بھی کب سے سکھانا چاہیے ویسے؟ جی کب سے سکھانا چاہیے ہمیں یہ بات کہ اس طرح سے انٹر نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم آپس میں ملتے بھی ہیں تو سلام کرنا چاہیے. رائٹ فروم ارلی چائلڈ ہوڈ. بالکل صحیح بات ہے. یعنی کہ کوئی اس کی خاص عمر نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ چیز کہ اپنے عمل سے بھی شو کریں ایک تو، کہ ہم جیسا کریں گے وہ ہمیں دیکھ کے فالو کریں گے. اگر ہم ہر دفعہ جاتے آتے نوک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اس کو دیکھیں گے، है ना। और मतलब मैंने यही चीज नोटिस की है कि बचपन से बच्चे जो आपको देखते हैं फिर वो वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, और जब समझने लगे, जी बिल्कुल, यानी वही चीज समझने लगे तो फिर तो आपने उनसे ये अगर नहीं कर रहे तो उसको हमने रीइंफोर्स करवाना है कि नहीं ऐसा करना है और लाजमी कर लें जी, अपने अमल से दिखाना है। बिल्कुल सही बात, अपने अमल से दिखाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एक तरह से टीचिंग करता है। और इसको एक चीज बताएगी कि ये हमारे लिए ज्यादा पाकीज़ा बात है, तो पाकीज़ा बात किस तरह से, इस फ्रेज से हमें क्या बात समझ में आती है?
पब्लिक
जी, हुआ अस्काल अकुम, इससे हमें क्या बात समझ में आती है? हम हज पर थे तो होटल में किसी मुल्क के लोग, वो रात के 2 बजे लोगों के दरवाजे पर इतनी जोर जोर से मारते थे कि ऐसा लगे कि जबरदस्ती अंदर आना चाह रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ही याद आया जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। खैर, अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे, हम कम नो मिक्सिंग इन केस सम मैन इज इनसाइड, नो मिक्सिंग इन केस अ मैन इज इनसाइड। सी, तैयब लाइफ विल हैव सलाम ऑन टंग्स एंड पीस इनसाइड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और हो सकता है कि अगर हम किसी के घर ऐसे अचानक चले जाएं या नॉक किए बगैर अंदर चले जाएं, वो किसी ऐसे हुलिये में हो कि जो हमारे सामने होना नहीं अप्रोप्रिएट है, तो इससे फिर हो सकता है शैतान कोई वसवसा डाल दे हमारे जहन में या उनको अनईजी कर दे। जाहिर है कि ये चीज अच्छी नहीं है, इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग जिना भी, बिल्कुल उसकी तरफ भी जाने से भी ये एक तरीका है। देयर इज अ हदीस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सलाम, तकरउ सलामा अला मन अरफ्ता व मा, जी बिल्कुल, अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, कि हर किसी को सलाम करा जाए कि जिसे हम जानते भी हो और जिसे हम ना जानते हो। लेकिन ये चीज बहुत कम देखते हैं ना हम, कि हम ये बहुत कम एक तरह से प्रैक्टिस में रखते हैं, क्यों नहीं कर पाते हम ये चीज जी, ये चीज क्यों नहीं कर पाते हम कि हम हर किसी को सलाम करें। और मुझे लगता है कि इसमें वाकई हम सब की कमी है और हमें मजीद आगे बढ़ना है इसमें। इवन दो दैट मैंने देखे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाम में बहुत पहल करते हैं, जैसे मेरे फादर हैं तो वो कहीं भी होंगे, कभी न्यू प्लेसेस भी जाते हैं तो वो हर किसी को सलाम करते हैं। इवन दो मुझे, मैंने ये भी देखा कि हमारे घर के पास एक पार्क, जैसे कोई भी कभी भी कहीं भी हम रहे तो उसके करीब अगर कोई पार्क होता तो वो एक्सरसाइज के लिए जाते थे, हमसे ज्यादा उनको लोग जानते थे। और इस सब की वजह यही होती थी, बल्कि वहां जो आते थे वो भी हैरान होते थे कि आप हर किसी को कैसे जानते हैं, तो वो यही कहते थे कि मैं बस सिर्फ सलाम करता हूँ, फिर आगे खुद ब खुद जान पहचान हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो डू दिस, इसका फायदा बहुत है। जल्दी में ऑफन वी फॉरगेट, जी बिल्कुल, फॉरगेट भी हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं, फॉरगॉटन सुनना है। आई ट्राई ऑलवेज टू से सलाम टू एनी मुस्लिम सिस्टर आई सी इवन इन द शॉप्स, बहुत अच्छी बात है। और घर में एंटर होकर सलाम करना तो इतनी अच्छी आदत है, ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत सारे लोग करते भी। लेकिन जहां हमारा एक लैकिंग एरिया है ना, वो ये है कि हम घर से बाहर हर किसी को नहीं कर पाते, भूल जाते हैं कि ये कितना अहम है। और समटाइम्स ये भी होता है ना कि चूंकि हमारी हमारे दरमियान हमारे सोसाइटी में ये सुन्नत बहुत आम नहीं है, तो आपको सामने से बहुत वेलकमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन इधर हमने अपना काम करना है। समटाइम्स मैंने देखा है कि अगर सामने से भी बहुत स्टर्न फेस है ना, मगर अगर आप स्माइल करके कर दें अस्सलाम वालेकुम, तो अगला शख्स भी मजबूर हो जाता है कि वो थोड़ी सी सही तरह से रिस्पॉन्ड करे। आई डू इट टू ऑल द लेडीज विद हिजाब, जी उससे तो खैर पता चलता है कि ये मुसलमान है, लेकिन अगर कभी कोई भी और हो तो हमें सबके लिए जिससे पता चल रहा है कि ये वो मुसलमान है तो हम कर सकते हैं। जैसे हम मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, वहां तो अक्सरियत ही मुस्लिम लोगों की है। मैंने, माई नेफ्यू इज 8 ईयर ओल्ड, ही सीज एनी मैन विद बियर्ड और एनी सिस विद हिजाब, ही गोज एंड डज सलाम टू देम सेइंग लुक दे आर मुस्लिम्स। बिल्कुल सही बात है, ये बात मुझे बिल्कुल याद है कि जो बच्चे होते हैं ना वो ये नहीं देखते, वो हर किसी को सलाम करते हैं। जैसे कि अब मस्जिद में देखा है, तो मस्जिद में भी अगर जैसे अब इब्राहिम भी जाते हैं या मेरे मेरे भाई का भी बेटा है, तो वो भी जब जाता है तो वो फौरन ही सलाम सबको कर देते हैं बच्चे, यानी वो नहीं देखते अच्छा हम इसको जानते हैं, अगले शख्स को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस वो कर रहे हैं। कभी कभी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुस्लिम सिस्टम मुझे देख रही है तो फिर मैं हेजिटेट करती हूँ, देख रहे हैं क्या मतलब, मुझे नहीं देख रहे। अच्छा आपको मुझे नहीं देख रही है तो फिर हेजिटेट करती हूँ। मुझे ये लगता है ना कि वो शायद सलाम का जवाब ना दें, लेकिन इसमें यही चीज है कि हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे तो अजर मिल रहा है, वो जवाब देना दें। लेकिन इट्स हार्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द ये चीज इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हम सब ने इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़ना है। अब हमने सूरत नूर पढ़ ली है ना, इन इफ यू डोंट टॉक शुड वी से सलाम। जनरली सलाम से सबको कर सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, बस यूज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे बराबर मुसलमान है, तो हम बैठते हुए सलाम कर सकते हैं, सलाम वालेकुम लाइक दिस। एंड इफ समवन यू नो, कि अब ये नहीं कि सामने कोई शख्स आपको देख ही नहीं रहा, और जैसे कि आप उनको पता ही ना चले कि अच्छा आपने सलाम करना है, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आई कॉन्टेक्ट हो तो फौरन करना चाहिए। एक रूम से दूसरे रूम वो सबको सलाम करती थी, बहुत अच्छी बात है। ऑफन टाइम्स आई गेट सलाम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पीपल हु डोंट लुक लाइक मुस्लिम अटायर। ये बात सच है, दिस इज ट्रू। वी शुड से सलाम इवन इफ वी डू नॉट टॉक टू देम। जी बिल्कुल सही बात है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थोड़ा बहुत रिकैप तो हो गया है, हम वेट कर रहे हैं ऑन साइट तक, ऑन साइट का, कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें। अच्छा आपने लिखा है कि जेंट्स को सलाम करने के मुतालिक, जेंट्स को सलाम खुद से इनिशिएट नहीं करना चाहिए। दिस इज मतलब ऑफ कोर्स ये वो एरिया है कि जहाँ पे डिफरेंट सब लोगों के ओपिनियन का मिलता है, लेकिन जनरली जो सही ज्यादा बात है वो यही है कि नामहरमों को खुद से सलाम करना हमारे ऊपर कोई कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि हमारी आवाज़ सुन के अगले शख्स को कोई गलत ही बात समझ में आना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन महरम सलाम करता है तो उसका जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, और बस रहती है कि वही सारी बात कि हमारी आवाज में कोई एक लचक ना हो, बस सीधे सलाम का जवाब हम दे दें, खुद से इनिशिएट करने की जरूरत नहीं मर्दों में। हदीस से पसर सेज, ये मुझे नहीं समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह गेट अ स्माइल एंड सलाम बैक फ्रॉम सिस्टर्स एज इट इज मोस्टली रिसीव्ड पॉजिटिवली। जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अच्छे हो या बुरे, बस हमने अपना अजर अल्लाह से लेना ना। आई से सलाम टू माई किड्स व्हेन दे वेक अप एंड दे से इट टू एवरी वन इन द हाउस। जी ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये एक बहुत अच्छी आदत है कि सुबह उठ के सबको सलाम करना, और आप देखें कि सलाम करने से बरकत आती है ना घर के अंदर। हम एक दुआ दे रहे हैं अगले शख्स को, और कितनी खूबसूरत दुआ है कि सलामती हो तुम पर, कि हम उसके लिए भी जो चीज़ मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमें भी सलामती देंगे ना। फिर मैं अगर मुस्लिम को भी करती हूँ और वो खुश और हैरान भी होते, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग हैरान भी होते हैं, बिकॉज ये कॉमन बात नहीं है कि हम सलाम करें सबको, लेकिन करना चाहिए, इसको आम करना चाहिए वाकई में। अच्छा मेरे जैसे अब हम यहाँ मलेशिया, तो यहाँ पर जैसे अरब हैं तो वो बहुत ज्यादा इस चीज को करते हैं कि वो जरूर सलाम करते हैं, चाहे आपको जानते हैं ना जानते हो, पास करते हुए भी वो सलाम करेंगे। स्टैंडिंग से टू दोज हु आर सिटिंग, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। व्हाट इज नॉन महरम एज अनाउंसमेंट, दैट्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट हमारे साथ रेडी हैं, तो इंशाल्लाह हम यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Oh.
من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب کتنے لوگ ہیں جو سو جائیں گے؟ اتنا ہیوی کھانا کھا کے تو کم ہی جاگیں گے, نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. جی آن لائن پھر ہم اپنے مائک جی جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی سوئے گا؟ صحیح, چلے دیکھتے ہیں. اور آن لائن پہ اپنے مائک لیں گے؟ ٹھیک ہے, چلیے ایک دو باتیں بس اس میں اور ذہن میں آ گئی, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. سب ریڈی ہو جائیں, خالی کوئی گیا تو نہیں بریک میں؟ کچھ لوگ گئے, خیریت تھی؟ دونوں گئی ہیں, آسیہ بھی گئی ہیں اور نادیہ کی طرح بیٹا ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. کسی کے گھر گئی ہیں؟ کسی در سے کوئی پارٹی ہے کسی کے گھر؟ ہاں جی, فرض چھوڑ کے نفل کبھی نہیں پڑھتے, ان کو میرے طرف سے کہنا. یہ جو آئے ہیں ابھی, یہ بعد میں جو مرضی کرے سنے, لیکن جو انسان بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے. حجیتم صباحاً اور حجیتم مساءً, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صبح بخیر اور شام بخیر. اور انگلش میں کیا ہے؟ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ, یہ کہا کرتے تھے اور بے تکلف گھس جاتے تھے. آج اگر ہمارے بھی یہ طریقے ہیں تو یہ پھر کوئی نئے طریقے نہیں ہیں, یہ پیچھے سے اسلام سے پہلے چلتے آئے. بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا. پھر ایک اور چیز اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح کسی کے گھر میں خود داخل نہیں ہو سکتے نا, اسی طرح اس کے اندر نظر بھی داخل نہیں کر سکتے, جس کو ہم کہتے ہیں جھانکنا, نگاہ ڈالنا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دوسرے کا خط پڑھا اس نے بھی زیادتی کی. حضرت صوبان جو اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام تھے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع باقی رہ گیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, یعنی کسی جگہ تاکہ جھانکی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ جاتے تھے تو دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہوتے تھے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا, عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا, تو آپ نے فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے رہو, اجازت مانگنے کا حکم تو اسی لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے, حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے نبی کے حجرے میں باہر سے جھانکا, آپ اس وقت ایک تیر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, آپ اس کی طرف اس طرح بڑے جیسے کہ اس کے پیٹ میں پھونک دیں گے. یہ وہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی اتنا کو برا لگا کہ میرے کمرے میں کسی نے کیوں جھانکا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ اللہ معاف کرے شادی کے دن دلہا دلہن کو ستانے کے لیے کبھی ان کے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر رکھنے کا رواج تھا, اور کبھی ان کے بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہیں, اور کبھی چھپ چھپ کے باتیں سنتے ہیں. کیا یہ مہذب لوگوں کی باتیں؟ کوئی بھی موقع ہو آپ کبھی کسی کی پرائیویسی کو خراب نہیں کر سکتے, اور یہ بہت بڑی خیانت ہوگی. پھر اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. کتنا آسان ہوتا ہے کسی کے ڈاکیومنٹ پڑھ لیں, اور آپ دیکھیے کہ خط پڑھنا ایسے ہے تو پھر اگر دین کے نام پہ اگر ہم کسی کا پیپر پڑھ لیں, تھوڑی سی نقل مار لیں, وہ کیسا ہوگا؟ یہ تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں ابھی ایمان آیا ہی نہیں, تقوی آیا ہی نہیں ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھے کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کتنے ڈیسنٹ تھے، مہذب تھے. اسی طرح کی باتیں اور بھی مل جاتی ہیں جس میں یہی مضمون ملتا ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں انسان بغیر اجازت کے جا سکتا ہے، اور وہ ہے ایمرجنسی. گھر میں آگ لگ گئے، چوری ہو گئی، ڈاکو آ گیا، پھر کسی سے اجازت لینے کی بجائے آپ ہو سکتے ہیں اس کی طرح اس کے گھر پہ، یعنی پھر یہ ایک استثناء موجود ہے باہر آئے. پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اندھا ہو، دیکھ نہیں سکتا، پھر وہ بغیر اجازت آ جائے تو کیا حرج ہے، کیونکہ اس کی تو آنکھیں نہیں، تو کہا کہ اس کے کان تو ہے نا، وہ کوئی بات سن تو سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اندھے اور بہرے کو اس طرح حکم ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کتنا سخت حکم ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی آیتوں کے شروع میں لکھ لیجئے دوسرا سد ذرائع زنا، زنا کو روکنے کا دوسرا دروازہ. پہلا کیا تھا؟ استحزان، اجازت طلب کرو بغیر نہ جاؤ، اور بغیر اگر کوئی اجازت نہ دے تو پھر چلے جانا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے. اب آگے کیا آ رہا ہے، جس کو ہم دو طرح سے دیکھیں گے، ایک مردوں کے نگاہوں سے، اور مردوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بولا، اور پھر اس میں عورتوں کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 30. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، سوری ایک منٹ، آیت نمبر 30 سے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ تر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں. اس آیت سے پہلے تو ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ پردہ صرف عورتوں کا نام ہے. ہمارے ہاں لفظ پردہ جہاں آتا ہے وہاں کالے رنگ کا برقع سے پہلے دور میں برقعے کے اوپر جو ایک پردے کی صورت میں اٹکا لیا جاتا ہے وہ آتا ہے، اور چونکہ وہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پردہ تو صرف عورتوں کا نام ہے، عورتیں پردہ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں، پہلے بات مردوں کی گئی. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، یہی انداز ہمیں اگلی آیت کے شروع میں بھی دکھے گا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عزت دی گئی ہے. ایک ڈائریکٹ حکم مل جائے وہ بھی بڑی بات ہے، اور بہت سارے حکم ایسے ہی ہیں قرآن پاک کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کے مضمون پر لے کر آنا بیچ میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ حکم دلانا چاہتا ہے کہ حب رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تم اپنے نبی کی بات کو مانو. اور یہی چیز آپ سورۃ الاحزاب میں دوبارہ پڑھیں گے کہ جہاں بھی یہ مضمون آتا ہے بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا جاتا ہے. دوسری بات، اب دیکھیے یہاں ایمان والے مردوں کی بات ہے. اصل چیز ایمان ہے. یہ باتیں جتنی اب ہم پڑھنے لگے ہیں، عورتوں کی ہوں یا مردوں کی، سمجھ اس کو آئیں گی جو آمنو ہوگا یا مومنین ہوں گے. جو لوگ اس بات کو سن کر چوں چاں اور آگے سے باتیں کریں اور یہ کہیں کیسے ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ آج کے دور میں ہمیں کیا بنا رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے ضرورت اس موضوع پہ بات کرنے کی نہیں ہے کہ لباس کیسے پہنو، نظریں کہاں جھکاؤ، کیا کرو، بلکہ اس کی جواب کیا ہے کہ للمومنین، ان کے ایمان کی فکر کریں. سچا ایمان آتا ہے تو انسان کو اپنی غلطیاں دکھتی ہیں، اور ایمان رخصت ہوتا ہے نا تو نعوذ باللہ اللہ کی غلطیاں دکھتی ہیں، شریعت پہ اعتراض اٹھتا ہے، زبان کھلتی ہے. اور ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کر کر پھر اصل میں اپنے گلٹ کو دور کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ شریعت دی ہی نہیں ہے جس پہ عمل کیا جا سکے، تو لہٰذا ہم تو اس شریعت پہ عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو سچا ایمان ان ساری باتوں کو ماننے پر انسان کو تیار کر دیتا ہے. پھر اگلی بات ہے کہ یغدو، یغدو کا لفظ غین دعات دعات، اردو میں آپ نے غصے بسر کا نام سنا ہوگا، یہ وہی لفظ ہے، نکاح، کسی چیز کو کم کرنا. لفظ یغدو کے بعد جو من آ رہا ہے نا، یہ بڑا اہم ہے. عربی زبان میں لفظ من کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. من بیانیہ بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بات کو بیان کرتا ہے، اور من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے. یہاں دونوں رائے لوگوں کی ملتی ہیں، لیکن جو عمل دیکھیں، پریکٹیکل دیکھیں، تو یہاں من بعض کا ہے. مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کا کچھ حصہ نیچے رکھیں. مطلب کیا ہے؟ کچھ وقت نیچے کریں، پہلا معنی من میں، اور دوسرا ہے کہ کچھ چیزوں سے. ठीक है। अब ये कुछ वक्त और कुछ चीजों को कैसे समझे, मुतलकन यानी कंप्लीटली कोई मर्द किसी को देखे ना, नजरें बंद ही रखे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। खुद ही टकरें करें खाएंगे और गिर जाएंगे। दुनिया का निजाम ना तो सिर्फ मर्दों की आंखें बंद करके चलने से चल सकता है, ना औरतों के। ठीक है, तो मर्द नजरें तो उठाएंगे, ड्राइविंग करेंगे तो उठाएंगे, चलेंगे सड़कों पे तो उठाएंगे, तो फिर यहाँ मिन से क्या मुराद है? खास नजरें। जब किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो नजर को झुका लो, ये मुराद है। यानी मीन क्या है? दूसरी नजर। जब किसी लड़के ने किसी को देखा बाहर चलते हुए, औरतें अपने एक्सपोजर के साथ फिरती हैं, किसी ने अपना हुस्न खोला, कोई वैसे ही दिख गया, तो उस वक्त क्या है कि ना देखो। तो गैर महरम औरतों को ना देखना, फुहश मनाजर को ना देखना, और दूसरे मर्दों के सतर को ना देखना। इन तीन चीजों को नोट कर लें। मर्द किस किस चीज से नजरें झुकाएगा? नंबर एक, गैर महरम औरत से। जब नजर पड़ जाए तो फौरन झुका ले। पहली नजर अल्लाह ताला माफ कर देता है क्योंकि वो इंसान की जरूरत है, लेकिन उसके बाद उसको आगे से आगे नहीं चलाना। दूसरी बात यह है, किस चीज से नजर दूर करें? फुहश मनाजर, गंदी फिल्में, इसमें हर वो गंदगी आ जाती है जिसके समरात फिर बाद में अमल में झलकते हैं। कोई फिल्म, कोई हीरोइन, कोई ऐसी न्यूडिटी, कोई क्लब, कोई बात, और सिर्फ इस एक हुक्म पर अमल से मुआशरे की तत्हीर हो सकती है। फिल्में गंदी बननी बंद हो जाएंगी क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा। मर्द नहीं देख रहे तो औरतें कहाँ देखेंगी? क्या एक फिल्म भी चलेगी? कोई ऐसे मनाजिर, फुहश मनाजिर चलेंगे क्या? आप सिर्फ इस एक हुक्म को लिखिए और मुमकिन बेहयाई की सूरतें दुनिया में जो फैल रही है उसको देखिए। एक मर्द जा रहा है, अब इस एकदम सामने क्या कोई चीज नजर पड़ गई, नीचे कर ली। मिसाल है किसी ने ऐड लगाया हुआ पड़ा एक औरत का, अब उसने तो ना औरत को देखना, तो औरत की तस्वीर भी नहीं देखनी। ये तीनों चीजें आएंगी, गैर महरम नहीं देखनी तो गैर महरम की तस्वीर नहीं देखी, तो वो ऐड लगाने का मकसद क्या गया? हल हुआ? फायदा ही नहीं, ऐड जाया हो गया। फिल्म बनाने वालों ने इतना पैसा लगा के फिल्म बनाई, अब मर जाए वो नजरें झुका के देख रहे हैं तो क्या काम चलेगा? यहां से पहले आप इस मजमून को थोड़ा सा समझ लें। पर्दा एक सिस्टम का नाम है, पर्दा एक एटीट्यूड का नाम है, पर्दा सेग्रीगेटेड माहौल का नाम है। पर्दा दुनिया में नाफिज हो ही नहीं सकता जब तक इज्तमाही तौर पर औरतों और मर्दों की लिमिटेशंस न रखी जाए। आज जब ये बातें हम सुनते हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो हमारे जहनों में जो सवाल आते हैं ना, हाय ये कैसे पॉसिबल है, हाय मेरे तो मियाँ नाराज हो जाएंगे, हाय मेरी तो सास कह देंगी, ये तो खानदान को काटने वाली आ गई, मेरी तो दोस्तें मुझे कह देंगी, मेरे तो फलां कह देंगे, 101 उधर औरतों के जहनों में आते हैं ना, उसकी वजह ये कि वो सेट माहौल ही नहीं है। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कों पर कोई कह दे कि एक छोटा सा जहाज लाते हैं और उसको चलाते हैं, तो आप कहेंगे कैसे होगा, सड़क टूटी हुई है। या यहाँ की कोई बड़ी अच्छी ट्रेन या बस कहेंगे पाकिस्तान की सड़क पे चला दे, तो कहेंगे कैसे चलेगी, उस शहर की तो सड़क टूटी हुई है, दिस एंड दैट। कोई चीज अच्छी होती है ना तो उसको चलाने के लिए रनवे भी चाहिए होता है। इस्लाम ने एक बेहतरीन सिस्टम दिया था, हम मुसलमानों ने जब तक बेस्ट किस्म के रनवेज बनाए इस्लाम के इजहार के लिए, ये बातें ना मुमकिन थी ना ना मुश्किल थी, बल्कि ये सब कुछ हुआ और होके देखा। बहुत दूर तो हम भी नहीं गए अभी, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी का शुरू आप अपनी नानियों दादियों या उनके बड़ों का देख लीजिए। मर्दान खाने अलग होते थे, जनान खाने अलग होते थे, औरतें घरों में भी रहती थी, मर्द भी रहते थे। आप से आज से बड़े बड़े खानदान थे, एक एक बाप के 4 10 7 7 बेटे और 7 7 बेटों के फिर आगे 4 4 बच्चे, 40 50 लोग तो एक घर में रहते थे। कोई बहुत बड़े घर भी नहीं थे, लेकिन जरा आप घर बनाने के वो स्टाइल सोच लीजिए, हवेलियां कैसे थी, घर में अंदर जाने का हिस्सा मर्दों का क्या, औरतों का क्या, ये एक सोच थी। घर में बाहर से दोनों इकट्ठे आते थे, ये औरतों के गुजरने का रास्ता है, ये मर्दों के। शादियां तब भी होती थी, लोग पहनते भी थे, सजते भी थे, उड़ते थे। उस दौर में असल में औरतों को हक दिए गए थे पहनने का, ओढ़ने का, औरतें आजादी के साथ ये काम करती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब रुझान बदले तो हमने घर बनाने के स्टाइल सबसे पहले बदले। अब हमारे घर के अंदर क्या करना है, बाहर सड़क पे आपको बड़े बड़े विंडो ग्लासेस के अंदर से औरतें चलती फिरती दिखती हैं, जाके देख लें जितने नए बनने वाले घर हैं। घर के अंदर जब एक औरत दिख रही है तो उसके लिए घर में जाने की किसी को क्या जरूरत होगी। फिर ऐसे ऐसे हमारी शादियों के नक्शे बदल के एक हॉल में बिठा देते हैं औरतों मर्दों को, और औरतें बेचारी मुंह बंद करके बैठ जाएं, मर्द किस किस से नजरें बचाएंगे, क्या होगा। तो ये सिस्टम देने के लिए इस्लाम ने जो खूबसूरत तरीका था कि मर्द नजरें नीची रखे। और याद रखिए, जिस जगह ये कुरान उतर रहा था, अरब था, गर्मी का मौसम था, बद्दू थे, गैर मुहज्जब लोग थे, शराब पानी की तरह पीते थे, जिना ऐसे आम था जैसे आज के दौर में बॉयफ्रेंड गर्लशिप वेस्टर्न माहौल में आम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्की अल्लाह के नबी ने जो इनका तस्किया किया था उसका हाल पीछे आप सुन चुके हैं इसी सूरत के अंदर, मरसद बिन मरसद के रात की तन्हाई में, चांदनी रात में, दौरे जाहिलियत की महबूबा खुद बुला रही है, अकेले हैं, परदेस है, सफर है, इसके बावजूद वहां नहीं रुके और वापस आके पूछते हैं कि अगर इजाजत हो तो मैं निकाह कर लूं। इसको कहते हैं तस्किया। अल्लाह के नबी ने ये तज़किया लोगों का जब किया तो उसका नतीजा हमने देखा, दुनिया में ये सब कुछ मौजूद है। तो लिहाजा यहां मर्दों को कहकर कि तुम अपनी यग़ुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी आंखों को झुका लो कुछ वक्त कुछ चीजों से, ख्वाहिश से, जब किसी की तरफ देखने से कोई ख्वाहिश आएगी तो ऐसे ना करो, गंदी नजरें ना तुम्हारी पड़े। अब आप देखिए कि जब आप किसी औरत को आमतौर पे नहीं देख सकते तो फिर आप अदाकाराओं को कैसे देख सकते हैं, और गैर मुस्लिम औरतों को कैसे देख सकते हैं, कुलीग्स को कैसे देख सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कमेटी कंपनियों वालों को कैसे देख सकते हैं, और खूबसूरत चालें चल के दिखाती हुई औरतों को कैसे देख सकते हैं। एक हुक्म पे अमल कीजिए, 70 दरवाजे बंद हो गए, और क्या ये मुश्किल हुक्म है? नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब ये करोगे तो इसका लामुहाला नतीजा क्या है, वयख्फज़ु फुरूजहुम। देखिए कितना करीबी ताल्लुक है निगाह और शर्मगाह के, शर्मगाहों की हिफाजत करें। इससे क्या मुराद है? नंबर एक, इसका मानिए इनको नेकेड करने से बचाएं, हिफाजत बामानी ढांपना, और फुरूज फर्ज की जमा है, फर्ज कहते हैं सुराख को, प्राइवेट, अपनी शर्मगाहों को छुपाओ। बहुत कम लोगों को पता है कि जिस तरह औरत दूध है शफाफ ना हो और वह साफ ना हो, पीछे सबक पढ़ाया था आपको सूरत अलअराफ में, सी थ्रू भी ना हो और इतना इलास्टिसिटी भी ना हो कि जिस्म जगह, सेम यही चीज मर्दों के लिए भी। तो जो मर्द टाइट जीन्स पहनते हैं और ऊपर शर्ट भी जो होंगे, इस पहले मानी में आती, मर्द का भी 70 पूरा नहीं होता, मर्द की भी नमाज नहीं होती उस ड्रेस में जो इतना टाइट हो कि जिस्म का एक एक अंग खुल रहा हो और उसके जिस्म के उभार भी दिख रहे हो। आप बताइए, आप इस ड्रेस के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज कैसी होगी? और यकफजू का दूसरा मानी क्या है कि इस शर्मगाह को हराम चीजों से बचाओ, हराम तरीकों से बचाओ, जिना से, लिवातत से, अपनी बीवी के साथ पीरियड्स, जायज ताल्लुक पीरियड्स में करने से, और ऐसी तमाम चीजों से अपने आप को बचाओ जो तुम्हें इस काम की तरफ मोटिवेट करती हैं। फायदा क्या होगा? ज़ालिक अज़्का लहुम, ये उनके लिए बहुत पाकीज़ा है। लहुम किसके लिए? नंबर एक, उनके दिलों के लिए। ना नजर उठेगी, ना किसी को देखोगे, ना ऐसे गंदे ख्याल दिल में आएंगे। और जो इसका इलाज करना चाहता है, किसी के अंदर हो सकते हैं शहवत बहुत, सबको कहते हैं कि वीडियोस मूवीज ऐसी गंदी चीजें देखना छोड़ दें, आप देखिए अस्काल हम नजरें पाक हो जाएंगी। दूसरा, इनकी इज्जत के लिए पाक है। बाइज्जत मर्द इतनी गंदी चीजें तो नहीं देखते, बाइज्जत मर्द इतने गंदे मनाजिर तो नहीं देख सकते। देखिए अल्लाह ने इंसान के अपने अंदर भी तो कोई रिस्पेक्ट रखी है ना, दिन की रोशनी में बैठे हुए हैं, हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह किताबें भी हैं, हमें कोई भी आके देखे हमें कोई बुरा नहीं लगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी हमारे लिए ऐसा वक्त ना लाए हम इसी हॉल में बैठकर कोई गंदी चीज देख रहे होते, अंधेरा कर देते, लाइटें बुझा देते और जो जिसका दिल चाहता देखते। तो क्या यही कैफियत होनी थी दिल की जो इस वक्त कुरान पढ़ के हो रही है? कुरान पढ़ के जो दिलों में मोहब्बत आती है अल्लाह की, क्या वो फिल्म देखने के बाद भी आती है? बाजार से गंदी चीजें देखकर आने के बाद भी आती है? म्यूजिक सुनकर भी आती है? ये तो हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मारी, फिर सुनाते हैं इधर दर्द है, इधर तकलीफ है, इधर मसले हैं, ये मसला आ गया, अब घर में टूटी लीक कर गई, अब छत चली गई। ये तो अल्लाह ताला शुक्र करें कि हमें पाक करता है, वरना जो हालात है आज हमारे मुसलमानों के, इसकी तो बात ही ना कीजिए। और यही है वो आयत जिसने एक मौके पे तारीख में जीती हुई हारी हुई जंग जितवा दी थी, मुसलमान जीत रहे थे काफी, दूसरी तरफ से रोमन थे, वो हार रहे थे। इतनी कोशिशें कर ली कि मुसलमानों को जिहाद से रोक सके, नहीं रुकते। कहा ये तलवार उठाने से नहीं बचबाज आएंगे, क्या करो, इनको नफ्स के फितनों में मुब्तला करो। रूम से खूबसूरत औरतें तवायफें बुलाई उन्होंने और उनको इन रास्तों पे खड़ा कर दिया जहां से मुसलमान सिपाही जाते थे। ये सोचकर कहा कि चलो वो औरतें इनको ले जाएंगी और जो जंग में नहीं जाएंगी उनके साथ वो वक्त गुजारेंगे। ये खबर मुसलमानों के अमीर को भी मिल गई। उन्होंने साथियों को जमा किया, कहा चलो भाई अल्लाह के बंदो जा रहे हैं ना जिहाद के लिए, और जरा उसी अल्लाह के कलाम से थोड़ी सी बातें पढ़ जाए। उनको यकीन था हम जितना कुरान सुन्नत पर अमल करेंगे हमारी जिंदगियों में खैर होगी। अच्छा यही आयत पढ़ा दी, कुल कुल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दी। कहा चलो जी चलो जंग में चलते हैं। वो लड़के जा रहे तवायफे रास्तों में खड़ी अपने लाड दिखा रही है, नजर उठाई नहीं देखी। यफ़ुज़ु मिन फुरूजिहिम से पहले उन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया, यगुद्दू मिन अबसारिहिम के जरिए सीधे गए जंग में, लड़े जीत के आ गए। जब जंग जीती तो वही तवायफों का गिरोह मुसलमानों के अमीर के पास आया, कहने लगी कि ये बताएं आज तक कोई हमारे हुसन से बच के नहीं गया, आपने अपने साथियों की कैसी तरबियत की है, इन्होंने तुम्हारी तरफ नजर नहीं उठाई। कहा मैंने क्या करनी है। अच्छा क्या, बस आज कुरान की एक आयत पढ़ाई थी, शायद उस पर अमल कर लिया होगा। कौन सी आयत? यही आयत। का अच्छा, तो अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, वो तवायफों का गिरोह मुसलमान हो गया। कि ये इस्लाम कितना खूबसूरत है, जिसकी एक आयत पर अमल ने हमारा इतना बड़ा फितना खत्म कर दिया, तो फिर इसके अंदर खैर कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, मेरा तो ख्याल है कि अगर मर्द सिर्फ इस पे अमल कर लें तो औरतें नंगी भी फिरेंगी तो मर्दों को परवाह नहीं। सिर्फ अगर मर्द पर्दा कर लेना, मर्द अपनी नजरों की हिफाजत कर लें, तो जिना, बेहयाई, फैशन और मिक्स गैदरिंग्स ये चलेंगी नहीं। आप सोचिए ना, इमेजिनेशन में लाइक मिक्स गैदरिंग है, औरतें खूब लच बच के आई हैं, जितने मर्द हैं माशाल्लाह वो मोमिन है, और जो अंदर आता है साथ ही ऐसे नजरें झुका के बैठ जाता है, दूसरा आता है ऐसे चुप करके राउंड टेबल पे बैठा, हो सकता है उधर को बैठी हो, अब वो खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगी बेगम कि ये मैं किस मौलवी के सामने बैठेंगी, दूसरे मेज पे जाएंगी, हम फिर कोई मौलवी साहब उनको देख के साथ ही नजरें पीछे कर लेंगे। आप देखिए अगली दफा उस महफिल में वो आके उस मेज पे नहीं बैठेंगी। बिलीव मी, बिलीव मी, अगर हम मुसलमानों को अपने दीन की सच्चाई का यकीन हो जाए, एक साल पूरी दुनिया से फुहश, करप्शन, गंदगी, मिक्सिंग सब खत्म, सिर्फ एक आयत पे अमल करने में। और आपको पता कि ये है जिना से रोकने का दरवाजा। कभी किसी से जिना हुआ कि उसको देखा ना हो, कभी कोई किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ उसको देखे बगैर, दरवाजा कहाँ से खुलता है, फ्लर्ट्स कहाँ से शुरू होते हैं। चले आप सोचें, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, एक लड़की के एक लड़के से मोहब्बत हो ही जाती है, आप कहते हैं जी हो जाती है, पहले कजन्स में होती थी, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों से होती है, कैसे होती है। यहुद्दु मिन अबसारिहिम की मौजूदगी में मोहब्बत होगी तो कैसे होगी। इस पे एक बड़ा अच्छा क्लिप मेरी आंखों में आ जाता है, खालिद यासिन साहब का वीडियो है उनकी, तो वो बता रहे थे कि नमाज कैसे बेहयाई से रोकती है ना, इन्न सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अपने एक्शंस के साथ करते हैं, लेकिन इसका खुलासा ये है कि एक लड़का खड़ा है मुसलमान है और उसके साथ गर्लफ्रेंड है, वो उससे तो एक हो गए, ओह टाइम टू गो, इज जोहर टाइम, अच्छा हनी तुम इधर बैठो मैं भी आता हूँ। अच्छा भी जाता, वो गई और वो चला गया, 15 मिनट कह के गया, 15-20 मिनट से ज्यादा लग गया। खैर वो आया, थोड़ा सा उसका मूड बिगड़ा हुआ था, खैर थोड़ी देर बाद उसने उसको कहा नो नो मुझे पढ़ना है, ये फरीज है, नमाज पढ़ी है। थोड़ी देर गुजरी, अभी वो उससे फिर फ्रैंक होने की कोशिश में, ओह टाइम टू से, और होंगी भी सर्दियां जो फौरन फौरन नमाज हो रही है, ओ आई हैव टू गो मुझे नमाज पढ़ी, व्हाट डज इट मीन, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो। खैर कहता नहीं मुझे जाना है, बिकॉज आई एम मुस्लिम, मुझे तो पढ़नी है नमाज। वो नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ के सिर की आ गया। अब जब पास आया, वो फिर दोबारा उसके पास आया, थोड़ी देर बातचीत की, मगरिब का वक्त हो गया, वो कहती है पीछे जाओ मेरी जान, छोड़ो, वो उसको छोड़ के चली गई। तुम्हारे साथ मैंने क्या रोमांस करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद तो तुम बाहर जा रहे हो। ये है इन सलात तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, कोई गंदगी की हालत में रह सकता है अगर वो 5 वक्त का नमाजी हो, चाहे वो जायज पाक नापाकी हो या नाजायज नापाकी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो आज हमने खुद अपने ऊपर मुश्किलात डाली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बादशाह की एक चिरागाह होती है और उसकी हदूद भी होती है, होती है ना, आपका घर है तो उसकी बाउंड्री वॉल्स भी मौजूद है। अल्लाह की हदें उसकी हराम करता चीजें हैं, जो इनके करीब भी चला गया वो जरूर हराम में पड़ जाएगा। सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ चुके हैं, वला तकरबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, जिना के करीब ना जाओ क्योंकि ये गंदगी भी है और बुरा रास्ता भी है। तो याद रखिए, एक भटकी हुई नजर जिना के करीब ले जाती है। आज के दौर में तो ये और भी आसान हो जाता है ना, कहते हैं कि व्हाट द आईज एडमायर्स द हार्ट डिजायर्स, जिस चीज को आंखें एडमायर करती हैं वो व्हाट अ स्वीट और लवली और फुला, तो दिल उसकी डिजायर करने लगता है। तो जिना की सजा से बचने के लिए इस निगाह को इंसान बचा ले जो बाद में उसको भटकाता है। एक रिवायत में है कि निगाह इबलीस के तीरों में से एक तीर है, यानी शैतान का वार बंदे पर बदनजरी से होता है, वो कामयाब हो जाता है, जहर की तरह फैल जाता है। मुस्नद अहमद में और तिर्मिजी में रिवायत है हजरत अली से कि पहली नजर के पीछे दूसरी ना डालना, क्योंकि दोबारा ना देखना जो ये गस्से बसर है। तो गोया कि क्या पता चला कि अपनी मर्जी से आप दूसरों को नहीं देख सकते। और आप देखिएगा कि औरतें जितना मर्जी बने ठने, अगर मर्द इस अमल कर लेंगे तो उनकी कोशिशें नाकाम होगी। और कुछ औरतें तो इतनी बदबخت हैं कि उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई हुई है अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। जिस्म की आराइश, जिस्म की जिबाइश, चंद मिनट के स्लॉट के लिए वो कितनी प्रैक्टिस करवाती हैं, क्या कुछ जिस्म के अंदर तब्दीलियां करवाई जाती हैं। इस पे तो अगर आप सुने तो हैरान नहीं, आज औरतें खुद को खूबसूरत करने के लिए अपने जिस्म में सिलिकॉन के बैग्स रखवाती हैं, ताकि हमारा सीना उभरा हुआ लगे। एक सिलिकॉन फटे तो वहीं उनकी जान चली जाएगी, हराम है ये। मैंने तो इस दफा अपने इस ट्रिप में एक स्कॉलर के से ये भी सुन लिया कि अपने फिगर को बड़ा करने के लिए अगर औरतें अपनी कोई ऐसी अंडरगारमेंट्स पहनती हैं जिससे उभार ज्यादा लगे, ये भी अलाउड नहीं है। उन्होंने तो आराम कहा था, मैं तो अलाउड नहीं कह रही हूँ। ये ऊंची एड़ी वाली जूती पहन के बाहर जाना, कहते हैं ये माइलात ममीलात में आता है। ये मैं आपको आलिम की बातें बता रही हूँ, ये अभी रिसेंटली इस यूएई के ट्रिप में मैंने सुनी है बातें, कि ई ऊंची एड़ी की जूती पहन के बाहर फिरना ये माइलातुन ममीलातुन में आता है। सर के ऊपर जूड़ा बना के जाना माइलातुन ममीलातुन में आता है। तो लिहाजा ऐसी चीजें करना, अब एक आम सीधी सादी घर की औरत तो ये कुछ कर नहीं सकती, नुकसान क्या होता है कि औरतें अपने आप को पीछे कर लेती हैं। अब ये तो मर्द की बात थी, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन के इशू पे चलेंगे क्योंकि इसमें तरतीब यही बेहतर है। पहली बात है कि एक मर्द अपनी बीवी के सिवा बाकी औरतों को उस तरह नहीं देख सकता। देखिए, नंबर एक महरम रिश्तेदार और एक है बीवी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिस नजर से बीवी को देख सकता है उस नजर से बहन को नहीं देख सकता, माँ को नहीं देख सकता, खाला को नहीं देख सकता। तीसरी किस्म की औरतें गैर महरम है, उनके लिए तो बिल्कुल अलग है। बीवी अल्लाह ने आपके लिए रखी, अंतुम लिबासुल्लहुन, वो आपके लिबास में खत्म। एक शोहर बीवी का झगड़ा था तो शोहर से किसी ने कुरेदने की कोशिश की, अच्छा क्या खराबी है उसमें, तो गुस्से में आगे कहने लगे वो मेरा लिबास है, तुम मुझसे क्यों पूछते हो, मैं अपने लिबास की बुराइयां बताऊं, मैं तुम्हें उसकी बुराई नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जहां से भी किसी मर्द की नजर उठती है, हदीस सुन लीजिए, मेरा एक हदीस से ही सारी बात पूरी हो जाती है। ये सही बुखारी की रिवायत है, जिसके बारे में किसी के दिल में शक भी नहीं आ सकता कि ये ठीक ना होगा। खुलासा बताऊंगी आपको, आपने फरमाया कि इंसान अपने तमाम खवास से जिना करता है। खवास के ऑर्गन्स, हिस, जैसे आंखें कान जो भी चीजें फील करती हैं। देखना आंखों का जिना है, ये कौन सा देखना है, अब लस्ट का देखना, ख्वाहिश के साथ देखना, पट पट आंखें खोल के देख लेना, लगावट की बातचीत जुबान का जिना है। ये क्या है, ये मीठी मीठी बातें हैं, लव स्टोरीज हैं, आई लव यू है, आई मिस यू है, और न जाने कितना कुछ इसमें शेरों और कार्ड्स की सूरत में और मैसेजेस की सूरत में हो जाता है। आवाज से लज्जत लेना कानों का जिना है, जब किसी के मीठे बोल सुनता है इंसान तो उससे कानों में जो लज्जत है उसको कानों का जिना कहा गया। हाथ लगाना और नाजायज मकसद के लिए चलना, हाथ और पाँव का जिना, यानी चल के गए डेटिंग मिल रहे हैं, ये मुलाकात हो रही है तो ये पाँव का जिना है, छू लिया अगर हाथ से हाथ को तो ये हाथों का जिना है। फरमाए बदकारी की ये सारी तमहीदें जब पूरी हो जाती हैं तब शर्मगाहें या तो इसकी तकमील कर देती हैं या तकमील करने से रह जाती हैं। बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है। हजरत बुरैदा से रिवायत है, हजरत अली ने नबी सल्लम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर न डालना। पहली नजर तो मुआफ है मगर दूसरी मुआफ नहीं। कई जालिम कहते हैं हम पहली ही नहीं वापस आने देते, हम वही लंबी कर लेते हैं। तो या खुद दो में नबसारी है, पहली को भी कहा था कि छोटा कर दो, इसको पीछे कर लो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि अगर अचानक नजर पड़ जाए तो क्या करूं? फरमाया, फौरन निगाह फेर लो या नीचे कर लो। मुस्लिम, अहमद, तिर्मिजी, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इब्ने मसूद कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये इरशाद, यानी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है कि निगाह इबलीस के जहरीले तीरों में से एक तीर है, जो शख्स मुझसे डरकर इसको छोड़ देगा मैं इसके बदले इसे ऐसा ईमान दूंगा जिसकी हलावत वो अपने दिल में पाएगा। तबरानी की रिवायत है। और यकीन कीजिए, जो मर्द अपनी नजरों को पाक रखते हैं उनके दिल में ही ईमान आता है, और उनको ही अपनी बीवी अच्छी लगती है जिनको दूसरों की बीवियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अबू मामा की रिवायत है, जिस मुसलमान की निगाह किसी औरत के हुस्न पर पड़े और वो निगाह हटा ले तो अल्लाह ताला इसकी इबादत में लुत्फ और लज्जत पैदा कर देता है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। आप कहते हैं मेरे शोहर मेरी बात नहीं मानते, आपका 10 साल का बेटा तो आपकी मानता है, उसको उसके दिल में ईमान डाले। ये जो घंटों टीवी के सामने बिठा के आदि कर देते हैं ना, चले कार्टून दिखाएं या फिल्में दिखाएं, होती तो औरतें और मर्द ही है ना, लड़कियां लड़के ही हैं, बच्चे बच्चे बच्चियां देख रहे होते हैं, बड़े बड़ी औरतें देखते हैं, इबादत का लुज्ब कहाँ है? कई माएं गिला करती हैं बच्चे नमाज फट से पढ़ के आ जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन इबादत मजा नहीं लेते। क्यों मजा ले, कैसे मजा ले, सुरूर ही नहीं आता उस नमाज में जिसकी निगाह भटकी होगी। इसी तरह आपको पता कि हजरत अलविदा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम के साथ आपके चचाजत भाई फजल, जो उस वक्त नौजवान लड़के थे, मशरे हराम से वापसी के वक्त अल्लाह के नबी के साथ ऊंट पर सवार थे। रास्ते में जब औरतें गुजरने लगी तो फजल इनकी तरफ देखने लगे, आदत भी होती है और बंदा गैर बेसाख्ता तौर पर भी देखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह पर हाथ रखा और इसे दूसरी तरफ फेर दिया, यानी यहां से घुमा के उनका सर इधर किया और कहा कि इस तरफ ना देखो। इसी हजरत अलविदा के मौके पर कबीला खसम की एक औरत रास्ते में रास्ता रोककर आपसे हज के बारे में मसला पूछने लगी और फजल बिन अब्बास उस पर नजरें गाड़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने इनका मुंह पकड़ा और दूसरी तरफ कर दिया। ये बुखारी, अबू दाऊद और तिर्मिजी की रिवायत है। बात वाज़ेह, इतना इतने से कम अज कम हमें ये बात तो समझ आ गई कि मर्दों के लिए ये क्या काफी है, और लिहाजा इससे आप देखिए कि ये बात समझ आ जाती है हकीकी जरूरत के तहत देख सकते हैं हकी कौन सी जरूरतें हैं जिसमें एक मर्द देख सकता है। नंबर एक, किसी औरत से निकाह करना चाहता हो मर्द, तो देखने की इजाजत से ज्यादा बल्कि पसंदीदा। मुगीरा बिन शोभा कहते हैं कि मैंने एक जगह निकाह का पैगाम भेजा, अल्लाह के नबी ने पूछा तुमने लड़की को देख भी लिया? मैंने कहा नहीं देखा, तो आपने फरमाया कि इसे देख लो। इस तरह ज्यादा तवक्को की जाती है कि तुम्हारे दरमियान मुवाफकत होगी। अहमद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा और दारमी की रिवायत है। अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स ने किसी शादी का पैगाम दिया, नबी सल्लम ने फरमाया कि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। ये मुस्लिम, निसाई और अहमद की रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश रखे तो हत्तुल इम्कान उसे देख कर ही इत्मीनान कर लेना चाहिए कि इस औरत में कोई ऐसी खूबी है जिसके साथ निकाह की तरफ रगबत दिलवाने वाली हो। अहमद, अबू दाऊद। तब जाहिर है कि जब वो ऐसी हालत में देखेगा तो माँ बहन की नजर से तो नहीं देखेगा ना, बीवी की नजर से ही देखेगा, तो इसकी रुख्सत मौजूद है। इसी तरह मुसनद अहमद में रिवायत में आता है कि फला जुनाह अलै, यानी लड़की को देख लेने में कोई मजायका नहीं है। इस सारी बातों को भी समझ लीजिए कि ये कैसे होगा, लड़की अगर एक मर्द खुद शादी कर रहा है तो औरत को कैसे देखेगा, और यहाँ इन रिवायतों से क्या पता चल रहा है? आपने कहा उसको देखा है, नहीं देखा, पर्दा करती थी तो नहीं देखा था ना। जो लड़कियां औरतें पहले ही मुंह खोल के देख रही हैं उनको देखने में किसी को क्या रुकावट होती है? तो औरतें पर्दा करती थी, जहां वो आते आएंगी इंशाल्लाह हम सारे दलाल जमा करेंगे उसके। लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि एक मर्द का ये हक बनता है कि वो ऐसे वक्त में औरत को देख ले, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा फैसला होता है, बाद में लड़के को लड़की पसंद ना आए, लड़की को लड़का पसंद ना आए, लेकिन ये सब कब होगा? मंगनी होने के बाद? नहीं, ये मसला तो आगे आयत में खुद भी खुल जाएगा कि जिन रिश्तों की लिस्ट अल्लाह ने दी है जिनके सामने खुल सकते हैं उसमें ना फियांसी है ना कजन्स है और ना उसमें बहनोई है और ना उसके अंदर देवर जेठ है। लेकिन ये मामला कब होगा? जब डिसाइड करना है, ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ذرا مزید تحقیقات کر لیں اور اب ساتھ رہ لیں. اسی سے لوگوں نے آج پھر شاید منگنی سے پہلے فیونسی کو پتہ نہیں کہاں کا محرم بنا کے پیش کر دیا. تو یہ صرف ایک نظر ہے, دیکھنا کیسے چاہیے. آج کل تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے, ماں بہنیں پہلی دیکھ لیتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے لڑکی کیسی ہے, ارد گرد کی باتیں بھی چیک کر لی, ماحول بھی ملتا ہے, حالات بھی ملتے ہیں. لڑکے کو ہاں کرنے سے پہلے ایک نظر دکھاتے ہیں اور لڑکی کو بھی دکھا دے, یہ تو پسندیدہ ہے. بعض کا یہاں تک دیکھا گیا جہالت سے کہ لڑکی کو دیکھنے کی جب لوگوں نے بات کی دیندار گھر میں, تو انہوں نے اس لیے رشتہ نہیں کیا کہ لڑکا کہتا ہے میں نے لڑکی دیکھنی ہے تو ہم ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرتے. یہ بالکل صحیح واقعہ ہوا تھا میرا خیال ہے, امریکہ میں کسی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی یہ بات کہ ہیں دیندار وہ لوگ لیکن انہوں نے لڑکی کو دکھانے کی کوشش کی تو اس سے معاملہ بگڑ گیا. دوسری بات, کہاں دیکھ سکتا ہے کوئی مرد کسی عورت کو؟ تفتیش کے موقع پہ, کوئی جرم ہو گیا ہے, کسی عورت پہ شبہ ہے, عدالت میں گواہی کے موقع پر, قاضی کے سامنے قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا, اور اسی طرح علاج کے لیے طبیب کا مریضہ کو دیکھنا. لیکن یاد رکھیے وہ بیماریاں جس کے علاج میں عورتوں کا علاج عورتیں کر سکتی ہیں, ہر کو عورتوں کے پاس جانا چاہیے. آج یہ بھی ایک ظلم کی حد تک بات سٹیٹس ہو گئی, سٹیٹس کا شیک ذریعہ بن گئی کہ عورتیں مردوں کے پاس جا کے علاج کرا رہی ہیں, خاص طور پہ اللہ معاف کرے جب وہ ڈلیوری کرواتی ہیں, اور اس مرد کا ہی تقویٰ ہوگا کہ پھر وہ کیسے بچے گا. تو عورت اپنے علاج کے لیے بیسٹ تھنگ ہے کہ عورت کو چوز کرے. کوئی جان پہ جانے والی تکلیف ہے, دل کی بیماری ہے کہ کوئی مرد عورت کر ہی نہیں سکتی تو یہ اور بات ہے, عام حالات میں پسندیدہ یہ نہیں ہے. اسی لیے اس چیز سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے شروع میں تین چیزیں آپ کو بتائی تھی نا, کہ مرد غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے, فحش مناظر کو نہ دیکھے, بس اس میں آخری چیز رہ گئی ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا ستر بھی نہ دیکھیں. اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ غصے بسر میں یہ بھی ہے کہ مرد دوسرے مردوں کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورتوں کا ستر نہ دیکھے. ابو داؤد کی روایت میں کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. اب مرد مردوں کے ساتھ کیسے ہو یا پھر تعلیمی ادارے, میرا خیال ہے کہ ہائی اسکول تک کے اسکولوں میں جو بچوں کے ٹوائلٹس ہوتے ہیں, ایک ہی بڑے کمرے کے اندر کئی ڈفرینٹ ٹوائلٹس ہوتے ہیں. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے امریکہ کا یہ بات سنی ہے, بیچ میں آڑ بھی نہیں ہوتی اور لڑکے دوسرے لڑکوں کے سامنے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں. بس ایسے ہاسٹلز بھی ہیں کہ جہاں شاور لینے کی جگہ میں ایک ایک کمرے کے اندر چار چار شاور لگے ہوتے ہیں, لوگ ایک ساتھ شاور لے رہے ہوتے ہیں. اسی سے پھر ہومو سیکشوالٹی, اسی سے لیسبینزم ہے. آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ درست نہیں ہوتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھٹنے, یعنی یہ آپ کے کیا بولتے ہیں اس کو, نیز سے لے کر ناف پیٹ تک, یہی عورت کا عورت سے, یہی مرد کا مرد سے حرام ہے دوسرے کا دیکھنا, بغیر وجہ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. رہ گئی بات عورت کا اوپر سے حصہ, یعنی ناف سے اوپر کا, بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں, مثلا ایک عورت ہے دودھ پلا رہی ہے, باوجود کوشش کے تھوڑا سا کسی عورت کے سامنے کھل گیا تو مجبوری کی حالت میں اتنا سے استثناء رکھا ہے کہ ضرورتاً اگر اس سے اوپر کھل جائے تو اور بات ہے, لیکن پیٹ سے لے کے ناف تک ران تک کوئی چیز عورت عورت کی نہیں دیکھ سکتی. ساتھ ہی اس کو دیکھ لیں, اب عورتیں ویکسنگ کراتی ہیں پورے باڈی کی, ویکسنگ فل آرم فل باڈی, غلط بات ہے. اور کسی سے بات کی تو نہیں کہا کہ بچہ بھی تو پیدا کرتے ہیں, اس وقت بھی تو پھر دوسری عورتیں دیکھتے ہیں. تو اب دیکھیے بچے کے پیدا کرنے میں وہ تو عورت خود نہیں کر سکتی, لیکن اپنی صفائی تو عورت خود بھی کر سکتی ہے. اللہ نے اتنے انتظامات دیے ہیں, کیا مشکل ہے, اور کیا ہم اللہ کے لیے اتنی بھی نہیں بات لے سکتے؟ اور اللہ معاف کرے, یہ ہوتا بھی تب ہے جب نزاکت آتی ہے, جب ایسے ہوتے ہیں گھروں میں عورتیں آتی ہیں پورے اور وہ سارے گلی میں پھرتی ہیں, ادھر کی باتیں جا کے ادھر سناتی ہیں, ادھر کی باتیں ادھر سناتی ہیں. تو عورت کے لیے عورت کے سامنے اپنے ستر کو کھولنا جائز نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کی ایسی مجبوری ہے وہ ایک اور بات ہے, استثناء میں تو بہرحال یہ سب کچھ کھل جاتا ہے. اب یہ ساری باتوں کو دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہے. ایک بات جو بہت ہی اہم ہے, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرع کی بات میں نہیں شرماتا, مرد کیا اپنی بیوی کے سامنے کھل سکتا ہے یا بیوی مرد کے سامنے کھل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب تو سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ انتم لباس اللہن وہن لباس لکم. اس کے بارے میں بھی ایکسٹریم پیش کر دی گئی جس کی وجہ سے کبھی حضرت فاطمہ کی اور حضرت علی کی باتیں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہیں, تو یہ حد سے گزرنے والی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس سوسائٹی میں آج ہم رہتے ہیں, اگر ایک عورت اپنے مرد اور مرد اپنے عورت کو مطمئن نہیں کرے گا تو بہت زیادہ ڈر ہوتے ہیں زنا اور برائی میں پڑھنے کے, خاص طور پہ جب دین کے نام پہ پھر ہم بہت ہی بے ڈھنگے اور اس طرح کے ہو جائیں کہ جائز چیزوں کو بھی پیچھے کر دیں. घर में आया तो सर से दुपट्टा ही ना तुम्हारा उतराओ, बाथरूम में भी जा रही हो तो दुपट्टा, और ये बाज़बा दीनदारों के मुंह से सुनी हुई बातें तो ऐसी बात नहीं है। बस लोग इस पे एक रिवायत भी पेश करते हैं कि जो अपने आप को खोल देता गोया कि वो एक गधा है जो गधे की तरह पड़ा, तो ये हदीसे रिवायतें ज़ईफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह के अमल से भी पता, नबी सल्लम के अमल से भी पता चलता है, अहादीस से भी पता चलता है। तन्हाई में बरहना रह सकता है कि नहीं मर्द, मर्द या औरत दोनों, तो वही बात है कि अल्लाह फरमाया कि खबरदार कभी नंगे ना रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जो कभी तुमसे जुदा नहीं होते। कौन? खैर और रहमत के फरिश्ते, सिवाय उस वक्त के जब तुम रफाए हाजत करते हो, टॉयलेट यूज करते हो, या अपनी बीवियों के पास जाते हो। बस इनसे शर्म करो और इनका एहतराम मलहूज रखो। ये तिर्मिजी की रिवायत है। एक और रिवायत है, अपने सतर को अपनी बीवी और लौंडी के सिवा हर एक से पूछा कि जब हम अकेले हो, तन्हाई में हो, यानी कपड़े उतार के छोड़ बैठते हैं तन्हाई में, तो फरमाया फल्लाहु तबारक व तआला अहक्कु, अल्लाह तबारक ताला इसका ज्यादा हकदार है कि उससे शर्म की जाए। ये अबू दाऊद और तिर्मिजी की रिवायत है। अब इसके साथ हम अगली आयत को ले लेते हैं और बाकी मसाइल इंशाल्लाह उसके अंदर हमें मिल जाएगा। और वो क्या है, आयत 31, वकुल लिल मोमिनाती, और कह दीजिए ईमान वाली औरतों से। वो क्यों आया है? पिछली आयत की कंटिन्यूएशन है। वहां मर्दों की बात पहले करके बता दिया, अब औरतों की बात है। इकट्ठा भी तो किया जा सकता था ना, क्यों नहीं किया? नंबर एक, इस वजह से कि अहमियत का एहसास हो कि ये मौजू इतना अहम है कि इसकी तो और मर्दों को अलग एड्रेस किया गया, और दूसरी इसकी वजह ये कि औरतों और मर्दों के हुक्म में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है इसको हम अभी देख लेते हैं। पहली बात, सारिहिन मिन अबसारिहिन, अपनी नजरों में से झुका ले। पहले क्या था, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, और अब क्या है, औरतें। बिल्कुल वही चीज रस्से बसर के जो मर्दों के लिए, इरादे से औरत को ना तो गैर मर्दों को देखना, ना फुहश मनाजिर देखने, और शहवत वाली नजर दूसरी औरतों पर भी नहीं डालनी। तीनों वही चीजें जो मर्द की थी वो औरत के लिए भी आ गई है। ठीक है, ये जरूरी है। अब यहां एक हदीस साथ ही सुन लीजिए कि हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना अल्लाह के नबी के पास बैठी थी, इतने में इब्ने मक्तूम आ गए। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से कहा कि इनसे पर्दा करो। बीवियों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या ये अंधे नहीं है? ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे। तो फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम उनको नहीं देखती? उम्मे सलमा कहती है कि ये वाकया इस जमाने का था जब पर्दे का हुक्म आ चुका था। अहमद अबू दाऊद तिर्मिजी की रिवायत है, और मौता में भी एक रिवायत है कि हजरत आयशा के पास एक नबीना आया तो उन्होंने उससे पर्दा किया। कहा गया कि आप इससे पर्दा क्यों करती हैं, वो तो आपको नहीं देख सकता। तो जवाब में उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं तो उसको देखती हूँ। ठीक है, समझ आ गई? यानी औरत इस तरह भी बचेगी। अब इसके बरक्स एक और रिवायत आती है कि सन 7 हिजरी में हबशियों का एक वफद मदीना में आया, और इसने मस्जिद नबी के अहाते में एक तमाशा किया, और अल्लाह के नबी ने ये मंजर हजरत आयशा को खुद दिखाया कि वो आपके कंधे पे हंसा रख के देख रही थी। ये बुखारी मुस्लिम और अहमद की रिवायत है। ठीक है, अब इसको देखें तो इसमें लगता है कि आपने देखा था मर्द को, उधर बताया कि नाबीना थी उसको नहीं देखना था। इसी तरह से एक तीसरी रिवायत भी आती है जिसमें फातिमा बिनत कैस है, इनके शौहर जिनको 3 तलाकें दे दी। अब सवाल यह था कि ये इद्दत कहाँ गुजारे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम्मे शुरैक अंसारिया के पास चले जाओ। फिर फरमाया कि नहीं, उनके पास तो मेरे बहुत सारे सहाबा आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो मालदार औरत थी, फयाज थी, कसरत से लोग उनके मेहमान बनते थे, खिदमत करती थी। कहा तुम इब्ने मक्तूम के पास चली जाओ, वो अंधे आदमी है, तुम इनके यहाँ बेतकल्लुफ रहोगी। मुस्लिम रिवायत है। अब ये सारी चीजों को जब आप जमा करते हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या औरत मर्द को देख सकती है? क्योंकि यगुद्दु मिन अबसार यगदुत्न मिन अबसार हिन्ना को साथ ही समझ के आगे चलेंगे। तो इसके बारे में आप बेहतरीन जो इसका जवाब है वो क्या है कि ये सब कुछ डिपेंड ऑन द कंडीशंस। अभी इसी ट्रिप में ये मैं फिर आपको बताऊंगी कि एक आलिम ही के जुबान से मैंने सुना कि ये जो यगुद न मिन अबसारी ना, वो कहते हैं ये मिन जो है ये तवीज का नहीं है, ये बयानिया है, तफसीरी है। यानी बिल्कुल वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि देख ही नहीं सकती, इल्ला ये कि वही बात जैसे मर्दों में कि नजर पड़ गई तो पीछे हट जाए और हट जाए, मत किसी जरूरत के तहत देखना नहीं, जायज नहीं। यानी जैसे आमने सामने बैठ बिठाकर एक दूसरे से बात कर लेना, एक दूसरे को देख दिखा लेना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अब हम इसको जब अमली तौर पे देखते हैं तो बात बिल्कुल वही है। अमली तौर पे देखें तो मर्द को औरत कब देखती है? नंबर एक, महरम है, घर के लोग हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखने में फिर फर्क होगा कि नजरें भी तो कई किस्म की होती हैं। शौहर को औरत किसी भी मामले में किसी भी हाल में देख सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। तीसरी बात यह है कि फोहश गंदी चीजों को औरतें नहीं देखेंगी। रह गई बात कि अब औरत बगैर शहवत वाली नजरों के क्या मर्द को देख सकती है कि नहीं देख सकती, जिसमें फिर सारी चीजें आ जाती हैं। तालीम के लिए उस्ताद को देखना, इमाम को देखना, उसकी इत्तबा कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, ड्राइवर को देखना, चौकीदार को देखना ताकि उनसे काम ले सके, करवा सके, तो इसमें वही बात आ जाएगी, फत्तकुल्लाह मस्तता। तो मैं तो सारी बातों को दोबारा, मैंने कल जितना भी गहराई से मैं इसको देख सकती थी मैंने देखा। मुझे तो यही लगता है हर औरत के हालात फर्क होते हैं, हर औरत का मामला फर्क है। ये बात बल्कि अगले मौजूदात में भी समझ लें कि पर्दा क्या जायज है, अबाया कैसा पहने, स्कार्फ कैसा पहने, चेहरे का पर्दा, वो फत्तकुल्लाह मस्तता। तो एक उत्ते इंसान की जिंदगी का इब्तदाई सफर, नहीं नहीं अब दिन की तरफ आ पाई है, या आप इसको कह लें कि आपने 8-10 साल की उम्र में पर्दा शुरू किया, अभी आप भी बच्ची हैं, आपकी उम्र ऐसी है, अभी खेलने खाने की है, या आप किसी ऐसे अल्ट्रा माहौल मॉड माहौल में है, शोहर ऐसा शोहर की बीवी है कि जिनके नजर में दीन भी कुछ नहीं है, तदरीजन थोड़ा थोड़ा बाकी चीजों को तय करते करते गुड बेटर दी बेस्ट पे आना होगा। ये तो है इस्लाम का मिजाज। लेकिन अगर आपके हालात मुवाफिक हैं, आपका सोसाइटी में क्या मामला है, किस दर्जे की है, तो उसके लिए अपने आप को चेहरे के निकाब में छुपा कर, आंखें खोल कर, मर्द के बिल्कुल सामने खड़े होकर बिल्कुल उसको डायरेक्ट इस तरह नहीं देखेगी, इससे खराबी पैदा होती है। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि यकदुत न मिन अबसारी हिन्ना के बाद वह यकफस न फुरूजा होना, सेम हुक्म है ना अभी तक, औरतें भी शर्मगाह की हिफाजत करें, वही सेम अहकामात मर्दों के लिए जो थे वो औरतों के लिए आगे, कि अपनी शर्मगाहों को छुपाएंगी भी और उसकी हिफाजत भी करेंगी। मर्दों में चूके जाहिर कोई खूबसूरती ऐसी नहीं होती जिसको आप डेलिकेसी कह सकती हैं, ब्यूटी कह सकते हैं, सॉफ्टनेस कह सकते हैं, तो अल्लाह ने मर्दों को यहाँ पे रोक के कह दिया बस यही दो काम कर लो, तो जालिका इसका लहूं। औरतों में बस एक एक्सेप्शन ज्यादा है, आप कह सकते हैं मर्द भी पर्दा करेगा औरत भी करेगी, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि औरत में चूंकि खूबसूरती है, औरत के अंदर नजाकत है, अट्रैक्शन है, औरत जैसी भी हो उसमें फिर भी कशिश होती है, तो जब औरत के अंदर कशिश है तो अल्लाह सुब्हान तआला तीसरा हुक्म दे देते हैं, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और ना जाहिर करें अपनी जीनत को, इल्ला मा ज़हर मिन्हा, हाँ मगर जो खुद जाहिर हो जाए उसमें से। यहां पर रुक जाए, बस अगला मसला अलग है, इस पे अब सारा लफ्ज पर्दे का घूमता है, औरत अपनी जीनत का इजहार नहीं करेगी। देखिए लफ्ज है मा ज़हर मिन्हा, इसका मानी क्या होता है, जाहरा का वो जाहिर हो गया, आप इसके साथ अलिफ लगा लें, ये छोटा सा ग्रामर का नुक्ता है, मा अजहरा मिन्हा तो मानी क्या हो जाएगा, जो उसने खुद जाहिर किया, यहां क्या है जहरा मिन्हा, जो कोशिश के बावजूद भी नहीं छुपता। ये नहीं कहा कि औरत खुद पहले आराइश करे, जिबाइश करे, नुमाइश करे और खुद जाहिर करे, फिर कहते ये तो मैं छुपा नहीं सकती क्योंकि ये मेरा अबाया है, ये मेरे स्काफ है, ये मेरी चूड़ियां हैं, ये मेरी मेहंदी है, ये वो है। अब ये माँ जाहिर अमिनहा में जो बात है वो क्या है, जीनत की। थोड़ा सा लफ्ज जीनत को समझ लेते हैं, आप जीनत किसको कहते हैं, जेबो जीनत, सजाना। कपड़े पहनने को आप क्या कहते हैं, अच्छे कपड़े पहने, फिर मेकअप कराने कहाँ जाते हैं, पार्लर में, मेकअप क्या है, जीनत है। कपड़े आम घर के रोजमर्रा के पहनने में सीधे साधे, उस पे मोती बेल सिलमा चमकी लगा ली तो ये जीनत है। फिर आप देखिए कि ज्वेलरी क्या है, जीनत के लिए पहनते हैं ना। खुशबू क्या है? जीनत है। हर वो चीज जिसमें कुछ अट्रैक्शन ज्यादा होती है वो जीनत है। अब अगर आप औरत के जिस्म से पहले शुरू करें बात को, जीनत से क्या मुराद है, तो सबसे पहले तो औरत का अपना जिस्म ही जीनत है। अल्लाह ने औरत के अंदर हुसन रखा है और कहते हैं कि शैतान ने उसके अंदर अट्रैक्शन डाल दी है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि जब एक औरत सामने से आ रही होती है ना, इमेजिन करें ना, मर्द खड़ा है और औरत आ रही है, तो शैतान उसके ये माथे पे बैठ जाता है और मर्द को कहता है इसके चेहरे को देखो। औरत की तरफ जब भी कोई औरत आएगी ना, सबसे पहले नजर उसके चेहरे पे जाती है। ये अलग बात है कि बाद में फिगर पे जाए। और कहते हैं कि जब कोई औरत जा रही होती है वापस, तो शैतान उसके हिप्स पे बैठ के कहता है मुझे देखो। और आप ये आप औरतों में भी देख लीजिए, कोई सिस्टर आती है तो चेहरे पे नजर पड़ती है, जाती है तो हिप्स पे आती है। तो फिर अगर उसको हम इतना टाइट रखें और ऐसे कपड़े पहने के जिससे हमारे फिगर इतने खुले, तो क्या हम अच्छे लगते होंगे? और ये जब मैंने पहली दफा कॉल पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि कितनी बड़ी सच्चाई है। अब इसके बाद आप देखिए कि औरत के जिस्म के अंदर वो चीजें जो कि औरत के तो हाथों में भी खूबसूरती है, औरत के तो पाँव की उंगलियों में भी खूबसूरती है, औरत के चेहरे में खूबसूरती क्यों ना होगी? इस एक आयत के टुकड़े पर बाज लोगों ने ये मुगालता देने की कोशिश की कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में औरत का चेहरा आता है, कि चेहरे का पर्दा नहीं है। आगे जाके आपको दलाइल लिखाऊंगी, मैंने दारे कुरान में दोबारा भी लिखाए थे इस साल, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो। 8-10 दलाइल आपको इस बात के लिखाए थे कि चेहरे का पर्दा कैसे है। इसको इसलिए यहां मैं ज्यादा उसको टच नहीं कर रही क्योंकि वो आगे सूरह तआला साहब में हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इस सारे हुक्म को समझिए जिसकी लिस्टें आगे भी आने वाली हैं, कि अगर औरत के चेहरे को ही नहीं छुपाना, जो जीनत की सबसे बड़ी इंतहा है। आप शादी करते हैं किसी लड़की के साथ अपने बेटे की, तो क्या देखते हैं? लड़की का चेहरा। मेकअप होता है तो चेहरे पे होता है, इतने से चेहरे पे तो सबसे ज्यादा ज्वेलरी टिकाते हैं, कानों में टिकाते हैं, गर्दन में टिकाते हैं, सर पे टीका लगाते हैं, चेहरे के लिए लगाते हैं ना, मेकअप करवाते हैं तो इस चेहरे का कराते हैं। आप देखे किसी को, आप कहते हैं फलां बड़ी खूबसूरत है, क्या आपका मुराद होती है उससे? चेहरा होता है ना। तो जो सबसे जीनत वाली चीज है आप उसको एक तरफ करके, तो काले बाल जिसको आप क्राउन ग्लोरी कहते हैं उसको छुपा भी लेते हैं तो क्या कारनामा करते हैं? हैरत होती है मुझे उन सिस्टर्स के ऊपर कि कस के एक पट्टे का पट्टा सर पे स्कार्फ की तरह बांध लेती हैं, और उसके ऊपर भी कई किस्म के छल्ले और क्या कुछ, उसके अंदर बाहर क्या कुछ औजार डाल के सजा के ये एक पूरा पटका सा सर पे डाल दिया, गर्दन भी खुली, बुंदे भी खुले, मुंह भी खुला, और हम कहते हैं पर्दा किए। और बुरा नहीं लगता? नीचे टाइट कपड़े पहने हुए और आप सर के ऊपर एक कपड़ा बांध दें। सच बताएं, चेहरा ज्यादा खूबसूरत होता है या बाल? चेहरा खूबसूरत होता है। हाँ, बाल चेहरे के साथ हो तो खूबसूरत लगते हैं, खाली बाल कहीं पड़े हो तो कराहत नहीं आती, खाने में बाल आ जाए तो क्या हालात होते हैं। तो लिहाजा औरत को अपनी जीबो जेब और जीनत का इजहार नहीं करना। आराइश की चीजें भी इसमें आती हैं, जिबाइश की चीजें भी इसमें आती हैं, जेवरात में कप सब कुछ नहीं करना क्योंकि इसी से फितना बनता है। तिर्मिजी की रिवायत है, मैमूना बिनते साद कहती हैं कि जब वो औरत जो रास्ता पे रास्ता होकर ना महरमों में फिरती है, वो कयामत के रोज तारीखियों में होगी, अंधेरों में होगी। तो औरत के लिए भी फिर ये सब कुछ जायज नहीं है। बारीक लिबास, चुस्त लिबास, अंदर से छलकता वाला लिबास दुरुस्त नहीं है। हजरत आयशा कहती है कि उनकी बहन हजरत अस्मा बिनते अबी बकर अल्लाह के नबी के सामने आई, वो बारीक कपड़े पहने हुई थी, तो आपने मुंह फौरन फेर लिया और कासमा जब औरत बालिग हो जाए तो जायज नहीं कि इसके मुंह और हाथ के सिवा इसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। ये अबू दाऊद की रिवायत है। अब आप देखिए, ये मुंह और चेहरे के सिवा और कपड़ों में आई थी, ये किसको ना दिखे? घर के मर्दों को ना दिखे। ये नहीं कहा था कि इन्हीं चमकते हुए कपड़ों में बाहर चली जाओ। इससे भी बहुत सारे लोगों ने इसको पेश करते हैं पर्दा ना होने के दलाइल में, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था इसमें मुंह और हाथ की बात आती है। ठीक है, तो ये सारी वो बातें होती हैं कि ये अपनी सोच के साथ समझ आएगी। जितना आप इसके अंदर गौर और फिक्र करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इस बात की बात समझ में आती रहेगी। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह के वो खुद को छुपाएंगी। कैसे होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक बाद में बात जो रहेगी उसको देखेंगे। वल यद रिबना भी खुमरी हिन्ना अला जियू भी हिन्ना, پہلے تو مبارک دیں ان عورتوں کو جن کو آج تک قرآن اور حدیث سے دوپٹے کے دلائل ہی نہیں ملے. ان کو بتا دیں یہ دلیل ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے دوپٹہ قرآن میں, یہ اوڑھنی, یہ چادر کدھر ہے؟ تو دیکھیے, ول یضربن مارو, کیا مارو؟ بکل مارو. عرب عورتیں جو تھیں جاہلیت کے دور میں کیا کرتی تھی, وہی کرتی تھی جس کی ابھی میں نے نقشہ کشی آپ کے سامنے کی ہے, کہ سر کے اوپر گھما گھمو کے دوپٹے کا دوپٹہ بنا کے جو اس کے تھوڑے سے پلو ہوتے تھے نا کمر کے پیچھے ڈال دیتی تھی. کبھی آپ نے کشمیری عورتوں کو پرانی تصویروں میں دیکھا ہوگا, پورے بال سمیٹ کے پیچھے دوپٹہ کرتی تھی, سینہ کھلتا تھا, اس پہ یہ آیت اتری تھی کہ نہیں, دوپٹہ ہے تو سر کا کپڑا, کرو کیا؟ خمری انا کو لفظ کو دیکھ لیجیے, خمر سے. خمار کہتے ہیں جو چھپا لے, سر کے اوپر کپڑا ڈالا جائے اور جسم کو جو چھپا لے, ڈھانپنا, عورت کا وہ لباس جو سر کو چھپائے. دیکھیے, آپ قمیض بولتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بدن کا کپڑا. آزار, ٹراؤزر, شلوار بولیں تو ٹانگوں کا کپڑا. کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے سنا, موزے پاؤں میں پہن لو؟ جب کوئی کہتا ہے میں موزے پہن رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پاؤں میں پہن رہا ہوں. میں گلاسز پہن رہا ہوں, بولیں کہاں پہنے؟ آپ بولیں میرے ساتھ, گلاسز آنکھوں میں پہنے جاتے ہیں نا. میں ٹوپی پہن رہا ہوں, میں ساکس پہن رہا ہوں, میں گلاس پہن رہا ہوں, خود ہی آ گیا. تو خمر کیا ہے؟ سر کا کپڑا. یہاں یہ تھا کہ سر کا تو پہنتے ہی ہو, پہنتی تھی, بس اب اس کو سینے پہ ڈال لو. ججوب جیب کی جمع, جیب نہیں ہوتی, وہ بھی اسی سے ہے, سینے کو کہتے ہیں, یعنی اس کو سینے پہ رکھو. اب آپ دیکھیے, وہ پہنے دوپٹہ اور پیچھے کر دیں تو آج ہم سکارف پہنے اور سینہ کھلا رہے. یہ ہے دلیل کہ سکارف بھی لیں تو اس کو کھول کے لیں. حیرت ہوتی ہے ان عورتوں پہ, اور میں خود سوچتی ہوں, اریٹیشن فیل ہوتی ہے بعض دفعہ, کبھی کوئی برادرز کے ساتھ بھی, کوئی سسٹر سکارف میں بھی ہوتی ہیں لیکن گلا بھی کھلا, سب کچھ بھی کھلا ہے تو یہاں تک دوپٹہ پتلا سا ہوتا ہے اور نیچے سے جسم کے باہر دکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے لیا جائے جیسے پرانے زمانے میں کہتے تھے نا کہ بکل مار لو, تو سینے کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہا نا کہ اپنے دوپٹے کو صرف گلے میں ڈال لو. تو جو ہم نے ایک وہ رسی والا دوپٹہ ایک دور میں لیا ہوا تھا, چمٹے ڈال ڈال کے اس کو قلب لگا کے پہنتے تھے, وہ دوپٹہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ وہ دوپٹے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی, آج عورتوں کے کدھر گئے؟ بن بھی جائیں جوڑوں کے ساتھ فینسی تو پہنتی نہیں لڑکیاں, عادت جو نہیں, پینٹ شرٹ پہ جو نہیں پہنتی, تو اب یہاں کیا پہنے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ویسٹ کی لڑکیوں نے سکارف کو قبول کر لیا, دوپٹے کو نہیں کیا. آپ ازما کے دیکھ لیں, کیونکہ دوپٹہ ویسٹرن نہیں لگتا. سکارف تو ہیڈ کی شکل میں ایک چیز دکھتی ہے نا, تو دوپٹہ بھی لو سر پہ کیسے کہ اس سے آپ کا سینہ چھپ جائے. اس لیے ایسی ساری چیزیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر سکارف کی بات ہوئی تو ساتھ ہی کر لیتے ہیں, سکارف کیسا پہنے, کیا کریں, کلرڈ پہنے, پنک پہنے, بلو پہنے, پرنٹڈ پہنے, پھولوں والا پہنے. ایک اصول یاد رکھیں, کاپی میں اپنے نام کے ساتھ لکھیے میرا اسٹیٹس کیا ہے. میں 8-9 سال کی ابھی ینگ بچی ہوں, پیدا ہوتی بھی کوئی بات نہیں, آپ اس کو پنک سکارف لے دیں, پپل لے دیں, پھولوں والا لے دیں, مکیش لگی ہو, اسٹونس لگے, اٹس اوکے. اس عمر میں شوق ہوتا ہے, ایسے کھیلتے کھیلتے ایک دن آئے گا ساتھ سکارف پہ آ جائے گی, اٹس اوکے, گڈ. دوسری بات ہے کہ جی آپ بہت ہی الٹرا ماڈرن ماحول میں پیدا کی گئی, آپ کے میاں صاحب جو وہ شہر کے کوئی MD ہیں یا فلاں فلاں, ان کو بڑی شرم آتی ہے, اور خاص طور پہ کالے سکارف میں ان کو آتی ہے. چلیں آپ ہلکے رنگوں کے لے لیں, تھوڑا سا لائٹ لے لیں, نو پرابلم, کر لیجیے, کوئی حرج نہیں. آہستہ آہستہ مزاج میں رچتی جائے گی بات, تو آپ بھی ان کی مدد کر دیں گے. جس دن آپ سنجیدگی سے سمجھ جائیں گی کہ آپ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں, میرے میاں کو اس کی کیئر ہی نہیں, آپ سادے دوپٹے سکارف پہ آ جائیں گی. سیدھی سی بات ہے, ایک چیز جس کو چھپانے کے لیے پہن رہے ہیں اس کے اوپر پھر کچھ لگا لیں. آپ حیرت کی بات ہے نا, تو اس پہ نہ تو فتویٰ, دیکھیے آج جتنی بھی یہ باتیں ہم کر رہے ہیں نا, یہ فتووں کی نہیں ہے, تقوی کی باتیں ہیں. آپ کس لیول پہ خود کو پاتی ہیں, اللہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بڑھتا ہے تو کپڑوں پہ اور کپڑے پہننے کو دل جاتا ہے, اور تعلق گھٹتا ہے نا تو کپڑے پہننے ہوئے بھی اٹھا ہوئے, پھر اس کو بھی اسٹائل سے پہنیں گے, اس کو بھی اداؤں سے پہنیں گے. چلے اس کی بات کی ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی زینت کو چھپانا ہے نا, تو زینت کو چھپانے کے لیے گھر کے کپڑوں کے اوپر ایک کپڑا پہننا ہوتا ہے. اسلام کا مزاج بڑا سمپل ہے. میں نے اور آپ نے جو کپڑے ابھی پہنے ہوئے ہیں نا, اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ جب ہم یہاں سے باہر جائیں, یہاں کوئی مر تو نہیں آتا نا, الحمدللہ ہر وقت گھروں میں مر تو نہیں ہوتے. ہم یہاں سے اٹھ کے آپ کسی سسٹر کے گھر جاتے ہیں تو جس ڈرائنگ روم میں وہ ہمیں بٹھاتی ہیں وہاں کوئی مر تو نہیں آتا. تو اسلام کہتے ہیں کہ وہاں ریلیکس رہو, اپنے گھر کے کپڑوں میں رہو, جیسے بھی موقع کے بنا سے ہلکے پھلکے پہنو, ہوا نہ بنا لو اپنے سر پر پردے کو کہ یہاں بھی سکارف لپیٹا ہوا تو وہاں بھی سکارف پہنا. اور حیرت میں جس وقت ہوتی ہے کہ ایک نیا کام عورتوں کو مل جاتا ہے جب وہ سکارف پہننے لگ جاتی ہیں, وہ جوڑے لے لے کے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اب ان کے میجک سکارف کی طرح. شاکنگ پنک کا سکارف پہننے کی آپ کو ضرورت کیا بھائی, آپ عورتوں میں آپ اتار دیں دوپٹا. میں اکثر سسٹر سے پوچھتی ہوں جو سکارف کرتی ہیں جب پارٹیوں میں دعوتوں میں ہوتی, میں کہتی ہوں سکارف اتار دیں, آپ کے بندے ہوں گے, آپ کا دل کر رہا ہے اگر کوئی ایسی چیزیں پہننے کو تو پہن لیجیے, کیا حرج ہے. نہیں عبادت ہو گئی ہے, کنگھی نہیں کی ہوئی, اب یہ نہیں ہوا کہیں ایب, الحمدللہ چھپتے ہیں سکارف اور ابائے میں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہی چیز آپ ابائے کی کر لیجئے. اب آپ دیکھیے کہ آپ زینت کو چھپاتے ہیں, جیسے ہمارے کپڑے ہیں کوئی بھی رنگ لے لیجیے, کوئی کپڑا آپ پہنتی ہیں پنک بھی پرنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, جارجٹ کے ہو سکتے ہیں, سافٹ ہے نا, اب اس پہ خوبصورتی ہے, عورت کا حق ہے, اللہ نے منع نہیں کیا, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ پیور ریشم کے کپڑے پہنتی ہیں, آپ جارجٹ پہنتی ہیں, کچھ بھی پہنتی ہیں, لیکن صرف شرط اتنی ہے کہ باہر جاتے ہوئے ولا یبدین زینت ہونا. اب اپنی زینت کو چھپانے کے لیے ابایا پہنا, آپ اس کو ابایا کہہ لیں, آپ اس کو برقع کہہ لیں, آپ اس کو پہلے دور میں شٹل کاک کہہ لیں, اللہ نے کچھ نہیں کہا, سمپل سی بات ہے کورنگ ہو. لوگ سوال کرتے ہیں اچھا جی ابایا پھر ہم ڈیزائنرز کا پہن سکتے ہیں, اللہ کے بندو کیوں اس مسئلے پہ اپنے آپ کو الجھاتے ہو, تم یہ دیکھو مقصد کیا ابایا کا کہ لا یبدین زینت ہونا. اب آپ نے یہ پرنٹڈ سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کے اوپر ابایا پہن لیا اور اس پہ میں نے موتی ستارے لگا لیے, کیا لا یبدین زینت ہونا اب زیادہ ہے کہ تب زیادہ ہے؟ اتنی سی بات ہم عورتوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ پھر وہی کہوں گی کہ اس کے لیے تدریجن اگر آپ کسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے شروع میں کرتے ہیں, نہ یہ حرام ہے نہ یہ کوئی, اس کو میں کہتی ہوں, آپ خود کو دیکھیں کہ آپ کب تک بچی بنی رہے گی. اور مجھے سچی بتا رہی ہوں, میں کسی پہ نہیں بات کر رہی, میں اپنے اوپر ہمیشہ لے کے بات کرتی ہوں کہ مجھے چھچور پن لگتا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ نان سینس سی بات لگتی ہے کہ برقعے کے اوپر, اور یہ ہوا کیوں, اس میں بھی پھر ایک ایکسٹریم ہے, جب ہم نے باہر والے کپڑے اتنے خوبصورت کیے تو پھر ہم محفلوں میں آ کے اتارتے ہی نہیں. 10,000 کا ابایا پہننا ہوا کیوں اتارے, چھوڑو جوڑا تو اندر پرنٹڈ ہے, ابایا پہن کے بیٹھے رہتے ہیں. اور وہ بیچاری سسٹر جو بیچاری ہے ابھی سکارف لینے کے بھی موڈ میں نہیں ہے, وہ آپ کو دیکھ ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی, آپ کو گرمی نہیں لگتی, آپ کو چبھتا نہیں, آپ کو یہ نہیں. ہم دور کرتے ہیں لوگوں کو, جس نے باہر سے گھر آتے ہی اپنے گھر میں آپ آئیں, آپ سٹے کی حیثیت میں فوراً ابایا اتارے, اس کو ٹانک دیں. آپ سکول میں کہیں بھی, سکول میں تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ کا یونیفارم کا حصہ ہے, ایک الگ بات کر رہی ہوں, صرف میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اس بات کا کہ عورت کے گھر کے باہر اور گھر کے اندر کے کپڑے میں فرق ہونا چاہیے. جب فرق مٹتا ہے نا پھر وہ ابائے خوبصورت ہونے لگتے ہیں, چمکنے لگتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں شادی میں پہن کے جا رہے, ابائے ذرا فینسی پہنتے ہیں. تو بھائی آپ نے کیوں تکلف کیا آج کل کے سکارف ابائے اور جو لانگ شرٹ چلی, اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں میرے لیے پچھلے 2-4 مہینے یا سال کے اندر گاؤن کا رواج تھا, ایسے ہی ہے نا, گاؤن چل رہے تھے. اب آپ بتائیے گاؤن, کسی لڑکی نے مثال ہے کہ بلیک کلر کا گاؤن پہنا اور اس پہ پتلی سی پٹی لگائی ہوئی ہے, اچھا سا ڈیسنٹ ہے, تو اسی طرح کا ایک ابایا آپ نے اوپر بھی پہن لیا, اس میں اور اس ابایا اس دونوں میں فرق کیا؟ بات سمپل ہے, پھر وہی بات ہے, آپ ڈیزائنر پہنے کچھ بھی پہنے آپ کی جو حیثیت ہے. اب آپ ایک سستا سا ابایا لیتے ہیں جا کے کہیں سے, 200 روپے کا آ جاتا ہے, لیکن اس پہ لال رنگ کی کڑھائی چڑھی ہوئی ہے, سرخ رنگ کے موتی لگے ہوئے ہیں اور اس میں نگ بھی چمکے ہوئے, اور آپ پہن کے آگے کوئی بات نہیں, میں نے سستا سا لیا 200 کا. اور ایک کوئی بندہ ہے وہ 10,000 کا ابایا لے کے آتا ہے, جس کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ابایا کے اندر ڈیسنسی ہے, سافٹ ہو سکتا ہے, قیمتی ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دوسروں کو بھارے, پہن سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جب کپڑے ڈیزائنر کے پہن سکتے ہیں تو ابایا بھی ڈیزائنر کا پہن سکتے ہیں, ایشو یہ ہے ہی نہیں, آپ کہہ لیں کہ یہ نان ایشو ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو نہیں سمجھیں گے, ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ جو چیز زینت چھپانے کے لیے تھی اس پہ زینت ہونا اور بات ہے. آپ کپڑا اچھا لے سکتے ہیں, پلین لے سکتے ہیں, سمپل لے سکتے ہیں. اچھا یہ ابائے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں, آپ میں مثال دیتی ہوں, آپ دیکھیں کہ چونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے نا, اسی لیے ہم اس پہ اتنا وقت بھی لگا رہے ہیں تاکہ جب یہ آیتیں گزریں تو ہم اس کے بعد کہیں کنارے پہ پہنچ چکے ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک ہے کہ آپ باہر مردوں میں گئے ہیں, आप खुद ड्राइव करती हैं, आपको गैस भी डलवानी पड़ती है, रास्ते में आपने ग्रोसरी भी करनी है, कोई हक नहीं है आपको फैंसी अबाया पहनने का। दूसरी सूरत है कि आप अपने घर से गाड़ी में बैठी, आप अपनी दोस्त के घर गई। अब वो अबाया ऐसा है कि जिसमें नीचे कोई ऐसी किनारे पे चीज लगी है, या ऐसी है कि आप उसको उस वक्त ग्लव्स पहन लेते हैं, काम है। मेरे पास से एक दो अबाये ऐसे हैं जो मैं अपने इनसाइड पहनती हूँ, कभी मैं अगर बाहर पहनू आप मुझे खुद भी देख लीजिएगा, तो मैं अगर बाजू पे काम है तो ऊपर ग्लव पहनती हूँ बाहर जाऊंगी। और एक दो ऐसे है जिसको मैं मोड़ देती हूँ, यहाँ शायद आप मुझे देखें तो आप कहेंगे कि मैंने कढ़ाई वाला पहना है, लेकिन बाहर मैंने नहीं पहना होगा, या उसके ऊपर अबाये इसका ग्लव्स होते हैं, या उसको कढ़ाई को मोड़ के उसको प्लेन कर देते हैं। अब आप औरतों से निकली, औरतों में गई, उनके घर गई, ठीक है। आपको देखिए, हर बंदे को खुद भी तो अकल है ना कि जो मैं पहन के निकला हूँ ये मैं कैसा लगूंगा। कई अबाये ऐसे हैं, वो तो मेरा ख्याल है कि कभी भी बाहर पहन के जाना ही नहीं चाहिए, इतनी इलास्टिसिटी उसमें, इतनी लचक उसके अंदर है, जिस्म चलते हुए एक एक जिस्म का हिस्सा दिखता है। तो बहरहाल इसके लिए वही बात है कि जितना तकवा आएगा। खूबसूरत अबाये हैं आप, क्या आप उसको ड्रेस बना लें, फिर उसको अबाया ना कहें। शर्त एक है, उसके ऊपर बाहर जाते हुए कुछ और पहने। सारा इस्लाम का जो मसला है ना, वो ये है कि फैंसी अबाये बाहर नहीं आप पहन सकते। अगर आपने उसका ड्रेस बना लिया, फिर ये ना कहें कि ये अबाया है, फिर उसको आप ड्रेस कहें, उसके ऊपर एक और बने। और वाकई खूबसूरत अबाये होते हैं, आप खरीद लें उनका एज अ ड्रेस पहने, जैसे अरब लोग भी तो लंबी शर्ट्स पहनते हैं ना, या आप भी मैक्सीज पहनती हैं, इस तरह पहन लें और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देखेंगे जितना शऊर बेदार होता है ना, अनकंफर्टेबल फील होता है। जरा सी चीज लगी हो कहीं अबाये पे या स्कार्फ पे, तो खुद को बंदा बेवकूफ सोचता है। मुझे तो सच्ची वजह बेवकूफी लगती है कि मैं ये पहन के अब एयरपोर्ट पे जाऊंगी तो मैं लगूंगी क्या, लोग कहेंगे एक तो इसने इतना कुछ छिपाया हुआ है, ऊपर हमें जबरदस्ती दिखा रही है। तो इस तरह की कोशिशें करके इंसान जितना अपने आप को बचा ले। अब आगे लिस्ट है इसी आयत के अंदर, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ना जाहिर करें अपनी जीनत को इल्ला सिवाय। अब यहां 1 2 3 करके लिस्ट बना लीजिए। नंबर 1, लिबूलतिहिन्ना, अपने शोहरों के लिए। सबसे ज्यादा हक किसी को अगर है तो वो शोहर को है, शोहर को जीनत दिखा सकते हैं, और उसमें फिर जीनत जिस्म की भी है, लिबास की भी है, कपड़ों की, ज्वेलरी की, उनको दिखाएं जिनसे कुछ मिलना भी है, जिनकी नजरों को महफूज भी रखना है। एक औरत अगर अपने शौहर के लिए सिर्फ इस्तेमाल करती है ऐसी कोई चीज, तो वो उसके लिए सवाब की बात है, वो उसका जिहाद है, वो उसके लिए अजर की बात है। खुशबू भी लगा सकते हैं, जेवर भी पहन सकते हैं, आप मेकअप भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनिए, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी सूरत है, औ आबा इहिन्ना, बापों के सामने। क्या बाप के सामने उतनी जीनत खोल सकते हैं जितनी शौहर के सामने खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। अब यहां वो ऊपर वाली बात आएगी, लमा जहरा मिन्हा, हाथ, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत असमा को कहा था ना, कलाइयां, चेहरा और पांव, ये आप महरमों के सामने खोलें। कल भी एक क्लास से एक इंचार्ज उनका आया हुआ था मैसेज के, औरत महरमों के सामने कितना खोले, तो उसका यही जवाब है, बाहया लिबास हो, ढीले कपड़े हो, बाप के सामने आप चेहरा खोल ले, मेकअप किया हुआ है कोई हरज नहीं, ज्वेलरी पहनी है कोई हरज नहीं, लेकिन क्या आप अपने बाप को अपने सी थ्रू कपड़े दिखा सकते हैं या उसके सामने? हर एक को इसकी लिमिट पता है। फिर आप देखिए, आबाई हिन्ना में बाप भी है, नाना भी है, दादा भी है, बापों के ऊपर बाप, फिर आबाई बूल अति हिन्ना, शोहरों के बाप, सुसर। और इसमें भी नोट कर लीजिए, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि सुसर से जिस तरह पर्दा नहीं है ना, इसी तरह शोहर के बाप यानी दादा सुसर, नाना सुसर, आगे से जो उनके सुसर रिश्ते चलते हैं वो भी इसी में आते हैं। और ये भी ध्यान में रखें कि जो सुसर है ना, यानी जिसको हम अपनी जुबान में इस वक्त सुसर कह रहे हैं, ये भी हमेशा का महरम है। आज आपकी शादी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सुसर वो सुसर है, कल दो में से एक चीज हो सकती है, खुदा ना खास्ता तलाक हो जाए आपकी इस मर्ज से, वो सुसर कयामत तक के लिए सुसर है, उनसे आपका पर्दा भी नहीं, निकाह भी नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि बेवगी, शोहर फौत हो जाए तो सुसर उसके बाद भी रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा देखिए, आओ अबनाई हिन्ना, अपने बेटे। अब बेटे कौन से हैं इसमें? सगे बेटे, अख्याफी और दूसरे बेटे, यानी इसमें सौतेले बेटे भी आ जाते हैं। अब अबनाई हिन्ना, और अगर आगे देख लीजिए, आओ अबनाई बुउलति हिन्ना, शोहरों के बेटे, ये कौन है? सौतेले बेटे। जिस मर्द के साथ ताल्लुक कायम हो जाए उसके बच्चे भी फिर औरत के लिए महरम बन जाते हैं। फिर बेटों में फिर पोते भी हैं, नवासे भी हैं। बाप कहेंगे ना तो ऊपर के बाप, दादा नाना, और बेटा कहेंगे ना तो नीचे बेटा, पोता, नवासा, वो सब आ जाएंगे। औ इख्वानी हिन्ना, अपने भाई। कौन से भाई? सगे भी और सौतेले भी और रजाई भाई भी। दूध शरीक। अब बनी इखवानी हिन्ना, या बेटे अपनी भाइयों के, क्या कहते हैं इनको, भतीजे, ठीक है, फूफी। अब बनी अखवाती हिन्ना, बहनों के बेटे यानी भांजे। अब निसा हिन्ना, अपने मेलजोल की औरतें। अब इसकी दो तफसीरें हैं। हिन्ना से मुराद कुछ लोग कहते हैं मुसलमान औरतें, वो फिर कहते हैं कि गैर मुस्लिम औरत से भी पर्दा होगा, लेकिन यहां इससे मुराद है शरीफ औरतें। मुसलमान औरत शरीफ है तो उसके सामने भी औरत जाएगी, जैसे हम आमतौर पर जाते आते हैं, और अगर कोई गैर मुस्लिम शरीफ है मतलब खानदानी है उसके सामने जाएंगे। अब एक औरत है मुसलमान लेकिन उसके ताल्लुक मर्दों से है, प्रोस्टिट्यूशन कराती है, तो उस औरत से भी पर्दा करेंगे। यही चीज नॉन मुस्लिम के साथ भी होगी। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या वो जो अपने लौंडी और गुलाम हो। आज ये इशू नहीं है और जब कभी होगा तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें मुराद गुलाम गुलाम और लौंडी है। इस मर्द जो ख्वाहिश नहीं रखते औरतों की, इरबा का लफ्ज इधर आया है, यानी वो मर्द जिसके अंदर औरत की ख्वाहिश ना हो, जिसको आप इंतहाई हाजर कह सकते हैं, मर्द ना होना। अब इसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, ये मसलन के उम्र की कसरत हो चुकी है, या शुरू से ये ख्वाहिश नहीं थी, या हालात के बोझ ने इनको दबा दिया। ये वो लोग हैं जिनको हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना तुफैली, ये भाई इतना सा आया था हमारे घर में, अरब बूढ़ा हो गया बाबा। ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल किसी किस्म की ख्वाहिश नहीं रखते, तो ऐसे गुलामों और ऐसे घर के जो लोग हैं उनके साथ रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें हमारे ड्राइवर, हमारे खानसामा और हमारे घर के मोटे हट्टे कट्टे लाजिम नहीं आते। यहाँ तो खैर मिलता ही नहीं है, पाकिस्तान में देखें तो यकीन करें कि लोगों के घरों में मर्द खानसामे हैं, पूरे पूरे शेफ हैं। अभी मेरा दर्स था, आखिरी दर्स जब मैं गई तो एक अभी थोड़े दिन के लिए, तो इधर से लेके वहां तक टेबल खाने की सजी हुई थी। तो मैंने कहा आपने ये क्या किया, कहती मैंने नहीं किया, खानसामों ने किया। और वो मर्द फिर रहे होते हैं माशाल्लाह, 20-20 डिशें खाने की बनी होती है। कहती जब मैं दुनिया के लिए करती हूँ इतना, तो मैं दीन के लिए क्यों ना करूं, मैंने आपकी मोहब्बत में किया। तो वो खाने देख के लग रहा था ये कोई आम बंदा बनाया नहीं, जैसे वो होटल्स के शेफ्स होते हैं, उनको बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अगर कोई रखना चाहता है पर्दे की हदों में रखे, फिर वो बस किचन और उसके बाद। अब आप उनको बेडरूमों में ला रहे हैं, ट्रे ला रहे हैं, खतरनाक है, कई कई ऐसे मामला बिगड़ जाते हैं। बहरहाल फिर आगे देखिए, अब तिफ्लिल्लज़ीन लम यस्खरु अला औरातिन निसा, या वो बच्चे जो अभी औरतों की छुपी हुई बातों से आगाह नहीं हुए। दूसरे लफ्जों में मैं आसान लफ्जों में बोल दूं, जिनको अभी स्कूलों में सेक्स एजुकेशन नहीं मिली, ये भी एक रोग है आज के दौर का। अच्छे काम को बुरे रंग में कर दें तो वो काम अच्छा नहीं रहता। वक्त से पहले बे मौका, ना उनको अलिफ पता ना बे पता, और उनको आप जाके सारी बॉडी खोल के दिखा दें और जाके उनको वो दिखाएं, वो बच्चे कई सवाल आता के माँ बाप से करते हैं, और ये तक देखा गया कि फिर वो उसको प्रैक्टिकल भी करने की कोशिशें करते हैं। ये भी एक नासूर है जिसने आज के दौर पे बहुत ही ज्यादा लोगों को रखा। तो जिस उम्र में लड़कों के अंदर ऐसे जज्बात शुरू होने लगे, फिर उनसे भी बचने की जरूरत है। और इसकी निशानियां भी होती हैं, बाल आ जाते हैं चेहरे पे और आवाज बदलने लगती है। फिर फरमाया यहां तक पर्दे की लिस्ट खत्म हुई। अब मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ, क्या इस लिस्ट में मंगेतर है, कजन्स हैं, नंदों के बच्चे हैं, जेठ और देवर के बच्चे हैं? तो फिर हम क्या कहते हैं, ये तो घर के बच्चे हैं। हमारा कल्चर क्या है कि जैसे लोग खाला की इज्जत करते हैं ना, इस तरह मोमानी की भी करते हैं, जैसे पुप्पो की करते हैं ऐसे चच्ची की भी करते हैं। तो क्या मोमानी और जो चच्ची है वो महरम है? नहीं महरम। कल अल्लाह ना करे चचा का इंतकाल हो जाए या मामू मोमानी को तलाक दे दे, तो शादी हो सकती है, और हुई, ऐसे मामले हैं। आपके हम तो गए थे तो ये तो बच्चा था, इसका तो मैं मुंह धुलाती थी। अब धुला सकते हैं आप अपने देवर का मुंह? ये भी एक ढकोसला है हमारे यहाँ। ये तो मेरे, मैं तो बच्ची बच्चा थी तो मुझे भाभी नहीं माँ समझता है, जो मर्जी कर ले। इस पे मिसाल हजरत अनस की है, 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के घर गए थे, और जब पर्दे की आते उतरी 5 हिजरी में, तो 15 साल के हो गए, और एकदम उनको रोक दिया गया। तो परेशान हो गए कि शायद मैंने गलत काम कर दिया। कहा नहीं अनस, पर्दे की आते आ गई, वो आगे पढ़ेंगे सूरत अल अज़ाब में। तो जब घर का बच्चा वहां पर्दा कर सकता है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? ये फिर इस पे कड़वा घूंट भरना पड़ता है। और इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपको पता कौन होती है? सासे, ये तो फूट डालने आ गई, ये तो मेरे बेटों को लग कर दी, इस पर्दे की वजह से मेरे बेटे घर में आते नहीं। आए भाई, आपको कौन रोकता? इसके लिए फिर आपको अपना इखलाक और अच्छा करना चाहिए, दावत پکائیں کھلائیں، پابندیوں میں رہ کر اپنے اخلاق سے بتائیں کہ آپ دوسروں سے الگ نہیں ہیں، منگیتر اس میں نہیں ہے. فیونسی کو آج سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ وہ تو اب بس ہو گیا. یاد رکھیے اسلام میں منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے سوائے ایک وعدے کے، نہ اس کا کوئی کفارہ ہے نہ اس کا کوئی خمیازہ ہے. ہو بھی سکتی ہے آپ کی شادی، وہاں نہیں بھی ہو سکتی. لڑکیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ فیونسی کے معاملے میں ٹو پکی ہو جاتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس خواب خاصوں میں چاہ گیا، خوابوں میں بھی آ رہا ہے، منگنی چھوٹ جاتی ہے. سب سے زیادہ نقصان لڑکی کا ہوتا ہے، لڑکے تو بدل جاتے ہیں. کبھی ایسے رشتوں میں آگے بڑھ کے نہیں لانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ ضرورت کے تحت بات کروں. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ منگنی نہیں کرتے نکاح کر دیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح ہوا ہے. نکاح میں اور شادی میں آپ اور میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کوئی بتایا آپ میں سے؟ ایسے فی زمانہ، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، پریشان نہ ہو. جی رم، جی آپ کیا کہتی ہیں عشرت؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے، رخصتی کس چیز کا نام ہے کہ شوہر اور بیوی اتنا وقت اکٹھے ہو جائیں جس میں تعلق قائم ہو سکے. اگر آپ نے نکاح کیا بچی کا، بات کر لے، دیکھ لیا کسی کے ساتھ، اکیلے پھر بھی نہیں ہو سکتے، پھر آپ اناؤنس کریں کہ رخصتی ہو گئی. آپ نے سورت بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ جی آنٹی جی آپ بتائیں گے. سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے چار قسم کے مہر پڑھے تھے نا، خدا نہ خواستہ نکاح ہوا ہو اور طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے، تو رخصتی ہونے یا صرف نکاح کے بیچ کی عدت کا فرق ہے کہ نہیں فرق؟ حق مہر کا فرق ہے کہ نہیں فرق؟ کس سے پوچھیں گے، لڑکی سے کہ لڑکے سے؟ یہ بھی اب ایک عجیب شیطان نے ہمارے لیے دھوکہ کر دیا. یہ صرف ایک اب دنیا داری رہ گئی کہ ہم نے رخصتی کرنی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی. نکاح کو ایک گول بنا، اگر نکاح ہوا ہے الاؤڈ ہے میاں بیوی بن کے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن پھر اناؤنس کرنا پڑے گا. کل بچے کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے تو لڑکی سے آ کے پوچھیں گے اچھا اکیلے ملتے تھے تو کس طرح کے ملتے تھے، تو وہ رخصتی ہو گئی. اگر کوئی میاں بیوی نکاح کے بعد اکیلے کہیں چلے بھی گئے نا تو رخصتی ہو گئی، باقی پھر بس جو مرضی ہے آپ اس کو کہہ لیں. سمجھ آ گئی بات؟ فرق سمجھ آئے؟ کیونکہ اب یہ بھی ایک بہت بڑا ویسٹ میں ایشو ہے. دس دس میرا خیال ہے پانچ پانچ چھ چھ سال نکاح کر کے چھوڑ دیتے، یہ تو اور بھی زیادتی ہے. دیکھیں آپ مجھے کہیں کہ بھائی آپ پڑھاتی رہے ابھی کھانا نہیں ملے گا، تو میں مطمئن ہوں، اور آپ لے کے کھانا ادھر رکھ دیں پک بھی گیا لیکن مجھے کہ اپنے کھانا نہیں ہے، یہ تو آپ ظلم کرتے ہیں اور بھی زیادہ. تو یہ وہ پھندے ہیں جس کے اندر آج ہماری سوسائٹی پھنسی ہوئی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری باتیں کر کے آخری اب حکم اس میں کیا آ رہا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں نہ مارا کریں، پاؤں نہ ماریں تاکہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم ہو جائے جو کچھ وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. پاؤں کا زیور، بجنے والی چیز، یعنی عورت کی چال کا طریقہ بھی بتا دیا کہ پاؤں مار مار کے نہ چلے. تو ٹیپ ڈانسنگ کیا پھر، اور کیٹ واک کیا ہے، اور پاؤں کے گھنگروں کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں چھپے چھپی بھی چیز ظاہر نہ ہو جائے چلو بھی تو. اسی میں پھر علماء کہتے ہیں ہیل والی جوتیاں ٹک ٹک ٹک، اور اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ جب پاؤں کی آواز عورت کی آتی ہے تو مرد کے دل میں کچھ ہوتا ہے، تو اس کی خوشبو بھی تو ایک قسم کی پکار ہے نا. مرد کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دم خوشبو آتی ہے تو اٹھ کے دیکھتے نہیں ہے کیا ہو گیا، ایڈورٹائز تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے نا. تو خوشبو لگا کے جانا، مردوں میں سے گزرنا، ایسے زیورات پہننا جس کی آوازیں آئیں، چھن چھن کرنا، یہ سب اس میں نہیں ہے. اب یہ سب سن کے تو دم ہی گھٹتا ہے، ہائے اتنا کچھ خرابیاں، اتنا مسئلہ ہے. کانی وتوبو اللہ جمیع، تم سب توبہ کرو اللہ کے حضور. ایوہ المومنون، اے ایمان والو، اپنے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے ایمان کو ریوائز کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب ہم دیکھیں یہ معاشرے کا وہ ماحول ہے جو عمل کریں تو بہت خوبصورت پروٹیکٹنگ، اور آپ اس کو سزا سمجھیں تو خرابی ہے. آج اس لفظ کو بہت ہی بدنام کیا گیا، چادر اور چار دیواری. عورت کو قید کر دو، عورت کو باندھ دو، اس کو ڈھاٹا باندھ دو، اس کے منہ پہ نقاب ڈال دو، اور شٹل کاک کے آگے وہ جو جالی آنکھوں کی ہوتی ہے اس کو کیج کر کے دکھاتے ہیں، دیکھو پنجروں میں باندھا ہوا انہوں نے عورتوں کو، اور نہ جانے کیا کچھ. تو بات سمجھیے گا، آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے حفاظت، لکھیں پروٹیکشن، और एक है कैद, प्रिजन। जरा दोनों को टैली कीजिए। हिफाजत जब किसी की जाती है, किसकी की जाती है? कीमती चीज की, वैल्यूएबल चीज की। जब हिफाजत की जाती, किसी की जाती है, तो उसके साथ भी बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उसकी प्रोटेक्शन होती है आगे या पीछे। दूसरा लफ्ज है कैद। जब किसी को कैद किया जाता है तो वहां भी क्या होती है उसके इर्द गिर्द? कैद किसको करते हैं? जिसने कुछ गलत काम किया, क्रिमिनल, गुनाहगार, उसके भी मुहाफिज है, उसके पास भी पुलिस है। औरत खुद सोचेगी, अगर वो अपने आप को कीमती समझती है तो कहेगी इस्लाम इज प्रोटेक्टिंग मी, और अगर वो खुद को मुजरिम समझती है तो कहेगी ये तो एक प्रिजन है मेरे लिए। बाकी थोड़ी सी बात जो रहेगी कल करेंगे। आप लोगों के जहनों में कोई सवाल हो तो लिख के दे दें, इंशाल्लाह इस मजमून को आगे लेकर चलेंगे। कोई क्विक क्वेश्चन है जी?
सॉरी, एक स्टूडेंट का सवाल है, वो पूछ रही है कि क्या हम अपने टीनेजर बच्चों की जो है वो लेटर्स पढ़ सकते हैं, या अगर वो कमरे में है तो हम
जी
बाहर।
बहुत अच्छा सवाल है इनका। क्या हम टीन एजर या टीन एजर होते हो हुए बच्चों के खत पढ़ सकते हैं?
सॉरी, उसमें मजीद ये भी था कि जिस तरह वो कमरे में होते हैं तो हम क्या बगैर इजाजत के वो भी जा सकते हैं, और दूसरा या कान जिस तरह लगा के
जी
अगर वो कॉन्वर्सेशन करें तो सुन सकते
जी
हैं।
मैं इसी का सब का जवाब दे दूंगी, मुझे इशारा मिल गया, इतनी काफी है। आप देखिए कि क्यों देखते हैं, सामने देखिए। आपका बच्चा बेटा लो क्या है, लो मैं दिखाऊं। जैसे इस दफा मैं किसी बच्ची को मिली तो वो यूनिवर्सिटी में जाती है, अब किसी की बेटी है हमारे मिलने एलो में, तो मैंने ऐसे से पूछा, मैंने उसे से मैंने कहा किसी लड़के ने तुम्हें अभी तक पसंद किया? अब उसकी माँ भी पास बैठी थी तो वो तो देखे इसको क्या हो गया। मैं कहती तुम्हें कोई अच्छा लगा? नहीं इसका टाइम ही नहीं होता, नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता। मैंने कहा ये होता है कोई ख्याल में, मैंने कहा कोई अगर ऐसा हो तो हमें बता दो ताकि हम तुम्हारे घर वालों से बात करें। बच्चों से प्यार में, मजाक में, ये जिन्होंने कहा कि हम उनके खत पढ़ सकते हैं, सामने पढ़े, लाओ बेटा क्या, लाओ मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी बताओ। और छुपके रातों में अकेले में ये पसंदीदा नहीं है, इसलिए कि भी बच्चे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर अगर आप उनकी चीजें देखेंगी तो वो भी आपके देखेंगे। दोस्ती में सब कुछ कीजिए। आप आपका बच्चा आपसे क्यों छुपाए ये चीजें? ठीक है, तो रातों को बच्चे क्या कर रहे हैं अपने तौर पर भोलपने में देखिए, चले बेटा ठीक हो, एसी ज्यादा तेज तो नहीं, ब्लैंकेट लिया हुआ, इस बहाने रात को जाएं चक्कर लगाएं, लेकिन स्पाई बन के ना जाएं, इससे फिर वो उनके अंदर एक एग्रेशन आएगा। ठीक है, और कोई सवाल? चले ठीक है, कल बात करेंगे इस पे इंशाअल्लाह ताला। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
جزاکم اللہ خیر ان کے سیر واسم جزا جی، انشاءاللہ ہم بھی یہیں اپنے سیشن کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اور چونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے تو انشاءاللہ کل ہم پھر اپنے سیشن کا تھوڑا بہت ڈسکشن بھی کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے کویشچنس بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اور مزید کوئی بھی سوالوں کا اگر آپ کو جواب چاہیے ہو تو اسلام کی از اے ویری گڈ ویب سائٹ، یہ سارے سوالوں کا جواب وہاں بہت ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے الحمدللہ، آپ وہاں بھی سرچ کر کے دیکھیے گا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔